me. Stand away.
Stand away.
Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Radha Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Yashoda Nandana Braj Jana Ranjana Jamuna Tira Vanchari Yashoda Yashoda Nandana Braj Jana Ranjana Jamuna Tira Vanchari Yashoda Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Yashoda Nandana Braj Jana Ranjana Jamuna Tira Vanchari Yashoda Yashoda Nandana Braj Jana Ranjana Jamuna Tira Vanchari Yashoda Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Yashoda Nandana Braj Jana Ranjana Jamuna Tira Vanchari Yashoda Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
पाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शिष्यमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शिष्यमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्रवण उत्सव या श्रवण यात्रा के अंतिम दिवस पर आप सबका स्वागत है। बहुत जल्दी आप सबकी मुक्ति होने वाली है। इस अत्याचार से आपको बहुत जल्द छुटकारा मिलने वाला है। कल से आपको इतना सुनना नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती आकर बैठना नहीं पड़ेगा। हम लोग जब कोई कथा कहते हैं, किसी प्रसंग को कहते हैं, प्रवचन कहते हैं, तो उससे पहले नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं गुरु परंपरा को, श्री कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को, कई वैष्णवों को जिनसे उनकी कृपा प्राप्त हो सके। भक्ति ये कृपा पर आधारित है। भक्ति अपने बल से नहीं की जाती। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं, की जाने की बले तोमार धामे ते होइनु शरणागति। वो बोलते मैं नहीं जानता कि क्या बल है, किस लिए मेरा आकर्षण आपके तरफ हुआ। या फिर एक भजन में कहा गया है, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शक्ति आछे। कृष्ण आपके हैं ये वैष्णवों से कहा जा रहा है, और आप कृष्ण दे सकते हैं ये आपकी शक्ति है, इसीलिए आमी तो कंगाल मैं कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, तो कृष्ण कृष्ण बोलकर आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, कृपया मुझे कृष्ण प्रदान कीजिए। तो भक्ति का मार्ग कृपा पर आधारित है, कृष्ण कृपा से प्राप्त होते हैं, अपने बल से नहीं। निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया, अपने बल के ऊपर निज बल चेष्टा, चेष्टा यानी प्रयास। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए निज बल चेष्टा, अपने बल की चेष्टा पर प्रयास को छोड़ देना चाहिए। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िए, कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए उसके ऊपर। श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आश्रय लेना चाहिए। तो भक्ति का मार्ग कृपा पर आधारित है। ध्रुव महाराज को कृपा प्राप्त हुई। एक दृष्टि से लगता है कि ध्रुव महाराज ने तपस्या की 6 महीने तक, बड़ी कड़ी तपस्या, और उस तपस्या से कृष्ण प्राप्त हुए। लेकिन ये तो केवल 6 महीने की तपस्या थी। हिरण्यकश्यपु ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और बहुत कड़ी तपस्या। ध्रुव महाराज का तो शरीर जैसे था वैसे ही रहा, लेकिन हिरण्यकश्यप ने तो ये तपस्या की कि उसके शरीर के मांस को खा गए कीड़े, खा गए उसको, चींटियों ने खा लिया, केवल हड्डी रह गई। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, छोड़ा नहीं। तो अगर केवल तपस्या के बल पर भगवान मिलते तो फिर हिरण्यकश्यपु, रावण ये तो महान भक्त होते, इनको भगवान क्यों नहीं दर्शन देते उसी समय, उनकी तपस्या के आधार पर क्यों नहीं कृष्ण प्रेम दिया, क्यों उन्होंने विरोध किया कृष्ण का, क्यों उन्होंने विरोध किया रामचंद्र का। तपस्याएं बहुत लोग करते हैं। ध्रुव महाराज ने तपस्या की, लेकिन कृपा के कारण कृष्ण प्राप्त हुए। प्रहलाद महाराज ने कोई तपस्या नहीं की। आपने कभी सुना है प्रहलाद महाराज ने कोई तपस्या की हो? कोई तपस्या नहीं। राजमहल में रहते थे, मित्रों के साथ खेलते, कृष्ण कथा करते, कृष्ण का स्मरण करते, बस यही जीवन था उनका। हिरण्यकश्यपु ने कई 1000 वर्ष तपस्या की, और अंत में क्या मिला उसे? केवल चिंताएं, केवल कष्ट, हमेशा चिंता में रहता था, मेरा बालक क्या हो गया, इसको विष्णु कहाँ है, मारना है। प्रहलाद महाराज ने कोई तपस्या नहीं की, केवल कुछ कष्टों को सहा अपने पिता के द्वारा दिए गए, लेकिन उनको भगवान की प्राप्ति हुई। इसीलिए भक्ति का मार्ग कृपा पर आधारित है। और ये कृपा कैसे आती है? ध्रुव महाराज पर कृपा कैसे आ गई? अचानक नारद मुनि आ गए? क्या ये सब कुछ अचानक हो गया, कोई इसका कारण नहीं है? और अगर ऐसा होता तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि एक दिन हमारे जीवन में भी अचानक नारद मुनि जैसे कोई भक्त आ जाएंगे, हमारे सर पर हाथ रख देंगे, बस खत्म। नहीं, भक्ति निश्चित कृपा का मार्ग है। किसकी कृपा? भक्तों की कृपा। क्योंकि भक्ति ये भक्तों की संपत्ति है, कृष्ण की संपत्ति नहीं है। कृष्ण के पास कृष्ण किसकी भक्ति करेंगे? भक्तों की संपत्ति है भक्ति, इसीलिए भक्त दे सकते हैं। कृष्ण मुक्ति दे सकते हैं, भक्ति नहीं देते। भक्ति देने के लिए कृष्ण बहुत देर लगाते हैं, किसी भक्त को भेजते हैं। ध्रुव महाराज के पास पहले वो खुद भी आ सकते थे, नहीं, भक्त को भेजा। तो अगर भगवान भक्ति देना चाहते हैं तो भक्त के द्वारा देते हैं, स्वयं नहीं देते हैं, और वो भी बड़ी देर से देते हैं, एकदम तुरंत नहीं दे। मुक्ति तो बड़े आराम से दे सकते हैं, आप जाइए उनके पास, मांगिए मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, कृष्ण दे देंगे, जाओ मुक्त हो जाओ, ब्रह्म ज्योति में पड़े रहो, निर्वाण स्थिति में। लेकिन जब आप प्रेम मांगते हो, भक्ति मांगते हो, तो कृष्ण जल्दी नहीं देते, परीक्षा करते हैं आपकी। तो इसीलिए इस कृपा की याचना करने के लिए हम लोग प्रवचन प्रारंभ करने से पहले गुरु या फिर आचार्यों को, वैष्णवों को, भगवान को प्रणाम करते हैं। जैसे हम लोग हर रोज श्रील प्रभुपाद जी की प्रणति कहते हैं, नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वति देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। आप में से कितने लोग इसको कह सकते हैं बिना पढ़े बिना देखे, हाथ ऊपर खींचे। केवल ये प्रणति प्रभुपाद की जो हमने अभी कही, ओके। और आप में से कितने लोग इसका अर्थ जानते हैं, हाथ ऊपर खींचिए और बता सकते हैं, क्योंकि जो जो लोग हाथ ऊपर करेंगे उनको बताना भी होगा। अरे एकदम कम हो गए हाथ। हम लोग जिनसे कृपा की याचना करना चाहते हैं, हम लोग जिनके आंदोलन में हैं, हम जिनके अनुयायी हैं, रोज जिनकी जय जयकार करते हैं, उनको क्या कह रहे हैं वही नहीं पता। तो इसीलिए आप सबको ये याद करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रणति कहेंगे, इसके बाद आज का प्रवचन प्रारंभ होगा, ताकि प्रभुपाद की कृपा आ सके। आप लोग हमारे पीछे दोहराइए, पहली लाइन है, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। ये पहली लाइन है प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र की। तो अभी पूरा कहेंगे लाइन को, आप लोग उसको दोहराइएगा, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अभी हाँ भगवान प्रभु, आप अर्थ बताओ उसका जोर से थोड़ा जोर। हाँ पृथ्वी पर कृष्ण प्रेष्ठाय का मतलब क्या है, और विष्णुपादाय वही, ओके आगे, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माता जी में कोई अर्थ बताएं, किसको पता है, कोई नहीं, दुर्भाग्य की बात है। आप लोग को नहीं पता, बच्चों को नहीं, सीखना चाहिए। तो भी हम अर्थ बताएंगे, आप सब उसको लिखिए, याद करिए, मंत्र को याद करिए, क्योंकि ये प्रभुपाद की प्रणति है, सबको आना चाहिए और अर्थ भी पता होना चाहिए। प्रभुपाद जी की ये प्रणति चार लाइन में है और चारों लाइनों में चार अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। प्रथम लाइन है श्रील प्रभुपाद जी की स्थिति, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। ये उनकी स्थिति है। क्या स्थिति है प्रभुपाद की? मैं नमन करता हूँ, नमः ओम मीन्स नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ किनको? नमः ओम विष्णुपादाय, मैं उनको नमन करता हूँ जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है। विष्णुपादाय, पादाय ने जिन्होंने चरण कमलों का आश्रय लिया है और उस कारण से वे कृष्ण प्रेष्ठाय, प्रेष्ठा मतलब प्रेम, प्रिय, तो कृष्ण को वो बहुत प्रिय हैं। कहाँ पर? भूतले, इस भूतल पर। तो मैं उन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को नमन करता हूँ जिन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है और इसीलिए वो इस भूतल पर श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। तो ये पहली लाइन श्रील प्रभुपाद जी की स्थिति है। क्या स्थिति है उनकी? उन्होंने चरणों का आश्रय लिया है भगवान के और वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। दूसरी लाइन, ये जो दूसरा भाग है, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, ये उनका नाम है केवल। तो क्या नाम है उनका? श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी, ये उनका नाम है। तो श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, इति नामिने मतलब ये नाम है उनका। तो ये दूसरा भाग, दूसरी लाइन, केवल नाम है उनका। पहली लाइन उनकी स्थिति है, दूसरा लाइन उनकी नाम है, उनका नाम है। फिर तीसरी लाइन क्या है? नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। तो ये तीसरी लाइन उनके कार्यों को बताती है कि उन्होंने क्या कार्य किया जीवन में श्रील प्रभुपाद ने। तो पहली लाइन क्या थी उनकी? पहली लाइन क्या थी उनकी? स्थिति, स्थिति थी। दूसरी उनका नाम। तीसरा उनका कार्य। तो क्या कार्य किया? नमस्ते सारस्वते देवे, सारस्वते देवे अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य सारस्वते। तो नमस्ते सारस्वते देवे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य हैं, और नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। तो उन्होंने पहला महत्वपूर्ण कार्य किया, गुरु को स्वीकार किया, सरस्वती देवी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु स्वीकार किया, और दूसरा गौरवाणी प्रचारिणे, उन्होंने गौरवाणी का प्रचार किया। गौरवाणी मतलब चैतन्य महाप्रभु की वाणी, गौर चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं। तो उनकी जो वाणी है उसका प्रचार उन्होंने किया, गौरवाणी प्रचारिणे। और आखिरी जो भाग है वो है कि उनके प्रचार का क्या लाभ हुआ या प्रचार का क्या फल हुआ, ये चौथे भाग में है। और क्या फल हुआ? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, कि उन्होंने अपने प्रचार के द्वारा पाश्चात्य जगत जहाँ पर निर्विशेष और शून्यवाद फैला हुआ था उनका भी उद्धार कर दिया तारिणे। तो ये उनका प्रचार का फल हुआ। ठीक है, तो पूरा अब अगर हम प्रणाम करें तो ऐसे होगा कि मैं श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है और वे श्री कृष्ण को इस भूतल पर बहुत प्रिय हैं। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गुरु के रूप में स्वीकार किया, वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं और उन्होंने सारे जगत में गौरवाणी का प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार किया, और उनके प्रचार उस प्रचार के द्वारा पाश्चात्य जगत जहाँ निर्विशेष और शून्यवाद फैला हुआ था उस वहाँ पर भी लोगों का उद्धार किया। ठीक है, याद रहेगा। अब कौन बोल सकते हैं? अभी हमने बोला, बस जो बोला उसको दोहराना है। यस, बोलिए। जय, वंडरफुल, परफेक्ट, कोई गलती नहीं। और कोई माताजियों में कोई? यस, बोलिए जोर से। किसका? शून्यवाद का। वेरी गुड। और कोई बताएंगे? यस, मैं शिल प्रभु भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के। जिन्होंने, जिसने नहीं कहते, जिन्होंने। वंडरफुल, वेरी नाइस। और कोई महानात्मा, महात्मा? माता जी में और एक कोई बोलने चाहिए? प्रभु जी इसमें तीन हो गए, माता जी में एक ही हुए हैं। कोई माता जी में बोल सकते हैं? कोई नहीं? हाँ, सुमन माता जी नहीं? हाँ, आप कन्नड़ में बोलेंगे? कन्नड़ में बोलिए। और कोई? हाँ, कोई भी बता, कोई भी बोलिए। नहीं, कोई नहीं। लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, बोलने में आपको सबके सामने अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये बातें लिख लीजिए और याद होनी चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का ये प्रणाम मंत्र है, इसी से हमें कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए जब हम इसको दोहराएं, जब भी हम इस मंत्र को बोलें, प्रणाम मंत्र को, प्रणति को, तो इसके अर्थ को मनन करना चाहिए। दरअसल जब भी हम कोई भी चीज़ कहते हैं उसके अर्थ पर हमें चिंतन करना चाहिए। जैसे हम लोग सुबह सुबह संसार दावानल गाते हैं, तो हमें उस गाते समय उसके अर्थ पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्या है इसका अर्थ। रोज हम लोग बस गाते हैं संसार दावानल लीढ़ लोका तृणाय कारुण्य घना घनत्वम। अगर इसका अर्थ पता हो और इसके अर्थ पर मनन करते हुए हम उसको गाएंगे, चिंतन करते हुए, तो बहुत लाभ मिलेगा। जैसे इसका अंतिम जो हम लोग गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा नगति कुतोपि ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो जब हम ये गा रहे हैं, कोई भी चाहे जो लीडिंग कर रहा है या जो पीछे गा रहे हैं, तो हम सबको केवल एक ही ध्यान होना चाहिए कि जब हम ये गाते हैं तो उसके अर्थ पर हमें चिंतन करना चाहिए, और कोई कार्य सुबह नहीं करना चाहिए। जब मंगल आरती में हम आते हैं और ये गा रहे हैं तो हमें मनन करना चाहिए, यस्य प्रसादात, गाते समय मन में ये भाव आना चाहिए, यस्य प्रसादात मतलब जिनकी कृपा से, भगवत प्रसादो भगवान की कृपा मिलती है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतोपि, अगर उनकी कृपा नहीं है तो न गति कुतोपि, हमें कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती, कोई अच्छी गति नहीं मिल सकती, न गति कुतोपि। ध्यायस्तु वंस्तस्य, इसीलिए मैं ध्यान करता हूँ उनका, कब? त्रिसंध्याम, त्रिसंध्याम मतलब दिन में तीन बार। संध्या ये उस समय को कहते हैं जब एक समय समाप्त हो रहा है और दूसरा प्रारंभ हो रहा है, उसको संध्या कहते हैं। कभी कभी संध्या केवल शाम को कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में संध्या शब्द उसको कहते हैं कि एक समय समाप्त हो रहा है, दूसरा प्रारंभ हो रहा है। तो जब रात्रि समाप्त होती है, दिन प्रारंभ होता है, वो एक संध्या होती है। फिर जब सुबह का समय समाप्त हो जाता है, दोपहर शुरू हो जाती है, वो दूसरी संध्या कहलाती है। फिर जब दिन समाप्त हो जाता है और रात्रि प्रारंभ होने वाली होती है, वो तीसरी संध्या होती है। इसलिए त्रिसंध्याम, तीनों समय में गुरु का स्मरण करना चाहिए। तो अगर हमें अर्थ पता है और हमें गाएंगे तो कितना आनंद आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। हम गुरु से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से ही कृष्ण की कृपा मिल सकती है, आपकी अगर कृपा नहीं है तो फिर मेरी कोई गति नहीं होगी, मुझे कोई अच्छी गति नहीं मिलेगी, इसीलिए मुझे शक्ति दीजिए कि मैं बारंबार आपका स्मरण कर सकूं। तो इसी तरह जब हम प्रभुपाद की प्रणति कहें तो ये अर्थ सबको याद रहना चाहिए। याद रहेगा सबको ये अर्थ? आप सब ने लिखा है कि नहीं? आप लिख लीजिए, इसको अच्छी तरह से याद कीजिए, प्रभुपाद जी की प्रणति है, आना चाहिए सबको। तो जैसे हम बतला रहे थे कि भक्ति ये कृपा से प्राप्त होती है, अपने बल पर नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने बल पर सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, भौतिक चीजें प्राप्त कर सकता है बड़ी मेहनत करके, हो सकता है अगर उसके कर्म में है, उसने मेहनत की तो उसको मिल जाएंगे, या फिर कर्म में नहीं है, बहुत कड़ी तपस्या की तो योग साधना से उसको सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएंगी। और सिद्धियां क्या होती हैं? सिद्धियों में बहुत सी सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति। ये सिद्धियां क्या हैं? ये बड़े चमत्कार हैं, लोग कहते हैं चमत्कार। जैसे बहुत छोटा सा हो जाता है व्यक्ति, इतना छोटा दिखाई नहीं देगा। हनुमान जी के पास ये सारी सिद्धियां थी। देखिए, भक्त होता है उसके पास ये सिद्धियां अपने आप आ जाती, उसको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। सब बहुत छोटा हो जाना, या फिर प्राप्ति, यहाँ बैठे बैठे मान लीजिए कि आपकी इच्छा हुई, आप अभी यहाँ कुडाल में बैठे हैं और आपकी इच्छा हुई कि मुझे स्विट्जरलैंड से एक घड़ी चाहिए, स्विट्जरलैंड में घड़ियाँ अच्छी बनती हैं, तो स्विट्जरलैंड से घड़ी चाहिए, यहीं बैठे बैठे हैं। तो क्या करेंगे? आजकल लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, दो दिन में आ जाएगा। नहीं, प्राप्ति मतलब ऐसे व्यक्ति हाथ ले जाता है और स्विट्जरलैंड की एक दुकान में से घड़ी को ऐसे उठाकर तुरंत ला सकता है ना आश्चर्य की बात? अब आप सब सोच रहे होंगे, काश मुझे भी ये सिद्धि मिल जाए। भक्ति तो बाद की बात है, अरे यही बहुत है, जहाँ से जो चाहिए उठा लेंगे। तो ऐसे बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं, लेकिन ये सब भौतिक हैं। इससे जो भी प्राप्त होता है मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन भक्ति ये भौतिक नहीं है, और भक्ति अपने बल पर नहीं होती, कृपा पर होती है। तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि की कृपा हुई। भगवान की कृपा हम तक भक्त लाते हैं, सीधे नहीं आती है। अचानक ऐसा नहीं होता कि भगवान सामने प्रकट हो गए, चलो तुम्हें ले जा रहा हूँ। हो भी सकता है, भगवान चाहें तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन साधारणतः नहीं होता, भगवान करते नहीं हैं, अपने भक्तों को ही भेजते हैं। तो इसीलिए ध्रुव महाराज की जो कथा हमने पिछले दो दिनों में सुनी, अब हमें उसके महत्वपूर्ण सार, संदेश और ऐसे गुणों को सीखना चाहिए जिसके द्वारा वो भगवत प्राप्ति कर सके, ताकि उन गुणों को हम अपने जीवन में उतार सकें और हम भी भगवान की ओर जा सकें, भगवान को प्राप्त कर सकें। तो पहला गुण जो हम सीखते हैं ध्रुव महाराज की कथा से, वो है श्रद्धा। दूसरा गुण गुरु के वचनों में विश्वास। हमें विश्वास होना चाहिए गुरु जो कहते हैं उनके वचनों में। तीसरा, इंद्रियों को वश में करना, अर्थात तपस्या। तो उन्होंने इंद्रियों को वश में किया। और ज्ञान, नारद मुनि ने ज्ञान दिया उन्हें। और इन सब के अलावा दृढ़ता, दृढ़ बने रहना। नारद मुनि ने परीक्षा ली उनकी, अरे तुम छोटे बालक को, खेलने की उम्र है, जाओ खेलो। नहीं, मुझे भगवान चाहिए। जंगल में गए, वहां पर बड़े कष्ट हुए, देवताओं ने परीक्षा ली, ध्रुव महाराज हिले नहीं। तो दृढ़ता, भक्ति में दृढ़ता चाहिए। और फिर प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम ये अपने जीवन में अपना सकते हैं। सबसे पहले श्रद्धा, या उससे भी पहले अगर हम देखें तो एक चीज ध्रुव महाराज के जीवन में हम देखते हैं जिससे वो श्रद्धा की ओर आए, और वो क्या था? दुख। अगर उनके जीवन में दुख नहीं आता तो शायद ध्रुव महाराज कभी भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं जाते। अगर उनकी माता सुरुचि उनको रोक नहीं देती पिता की गोद में बैठने से, तो शायद वो कभी भगवान को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तो सबसे पहले दुख या त्रस्त हो जाना, अर्थात जब तक हम इस भौतिक जगत में आनंद लेते रहते हैं, सुख लेते रहते हैं, इस स्थान को बड़ा अच्छा स्थान मानते हैं और यहीं पर कुछ कर कर दिखाना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, जब तक हम ये नहीं जान लेते कि ये जगत दुखों से भरा है, तब तक तीव्रता नहीं आती, क्योंकि हमारी आसक्ति उस सुख में बनी रहती है। हम भौतिक सुख चाहते हैं, इसलिए उसके पीछे तीव्रता से भागते हैं, भगवान की भक्ति तीव्रता से नहीं करते। फिर हम भगवान की भक्ति नाम के लिए करते हैं, भगवान की भक्ति फैशन के लिए करते हैं, एक मान प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, ताकि समाज में लोग कहें ये भक्त है, बस। लेकिन भक्ति ना तो कोई मान प्रतिष्ठा के लिए की जाती है, ना कोई भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए, ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है। हाँ, मान प्रतिष्ठा मिल सकती है भक्त को, धन मिल सकता है भक्त को, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए भक्ति कभी मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं करनी चाहिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूं, देखो रोज मंदिर जाता हूं, बहुत लंबा तिलक लगाता हूं तो लोग देखकर कहें कि ये भक्त है। नहीं, लोगों को दिखाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कृष्ण को प्रसन्न नहीं करता, कृष्ण को जो स्वाभाविक कार्य है वो प्रसन्न करता। केवल लोगों को दिखाने के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में तीसरे अध्याय में कि ये व्यक्ति जो बाहरी चीज से दिखावा करता है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान कहते हैं जो बाहरी रूप से दिखावा करता है ना लोगों को दिखाने के लिए, भगवान ने कहा स्वयं कि बाहरी रूप से अपनी इंद्रियों को कर्मेन्द्रियाणि संयम्य बड़े संयम में रखता है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत तपस्वी हूं, योगी हूं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण, और उसका मन कहाँ है, इंद्रियार्थान, इंद्रिय विषयों में। बाहर तो वो बहुत दिखावा करे, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, और फिर लेकिन मन में सारा विषय भरा हुआ है, उसका मन भाग रहा है विषयों की ओर। भगवान क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, मिथ्याचारस उच्यते, मिथ्याचारी है, धोखेबाज है। तो इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए किया गया कार्य कृष्ण को प्रसन्न नहीं करता। तो भक्ति भी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए, फैशन के लिए नहीं करनी चाहिए, एक मान प्रतिष्ठा के लिए, ठप्पा लगाने के लिए, मैं इस्कॉन का भक्त हूं, ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति किस लिए करनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब पहली बात हम ये सीख जाते हैं कि इस जगत में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, हमें एक बार एक भक्त बता रहे थे उनके पास बहुत धन है, बहुत आनंद लिया करते थे वो अपने जीवन में, तो उन्होंने कहा कि जब पहली बार मैंने इस्कॉन के प्रवचन सुने तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या ये लोग बोलते रहते हैं दुख है दुख है, कहाँ दुख है। उन्होंने हमसे कहा, उन्होंने कहा जब पहली बार हमने सुना प्रवचन लोगों ने जीवन में दुनिया में बड़ा दुख है, तो कहाँ दुख है, होगा जिसके पास दुख होगा, हमें तो कोई दुख नहीं है, पैसा है, अच्छा परिवार है, आनंद ले रहे हैं, तो कहाँ दुख है। तो बता रहे थे कि काफ़ी समय तक मैंने कई प्रवचन सुने लेकिन जब भी ये बात आती थी मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये लोग ये क्यों बोलते हैं दुख है, कोई दुख नहीं है जगत में। फिर उन्होंने भागवतम पढ़ना शुरू किया, किसी ने उनको भागवतम दिया और उन्होंने भागवतम पढ़ना शुरू किया, और वो बताते हैं कि जब मैंने भागवतम पढ़ी तब मुझे पता चला कि कितना दुख है मेरे जीवन में, मैं तो सोच रहा था मैं बहुत सुखी आदमी हूँ। और तब वो ढूंढते हुए आए मंदिर को, अब बहुत अच्छे भक्त हैं, अभी बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, दीक्षा भी हो गई उनकी। तो व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में दुख आया और वो त्रस्त हो गए, इस जीवन से दुखी हो गए, हमें भी ये जान लेना चाहिए कि इस जीवन में सुख नहीं है, ये केवल बाहरी दिखावा है, किसी भी क्षण हमारा ये सुख चूर चूर हो सकता है। जैसे ध्रुव महाराज को उनके सुख को चूर चूर होने में एक क्षण लगा, बस सुरुचि ने रोक दिया, सारी चीजें होते हुए भी दुखी हो गए। और तब हमें श्रद्धा दिखलानी चाहिए, तो पहली चीज श्रद्धा फिर आती, जब हम जान जाते हैं कि ये जगत नहीं है रहने लायक, तो फिर कहां जाना है, कौन सा जगत है, मैं हूं कौन, क्यों मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तब ये प्रश्न व्यक्ति पूछता है, जिज्ञासा करता है, ये शुरुआत है भक्ति की, जहां हम ये प्रश्न करें कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं और मुझे ये बार बार कष्ट क्यों सहन करना पड़ रहा है, मैं हूं कौन, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या केवल जन्म लेना, थोड़ा बहुत संसार में बने रहना और एक दिन मर जाना, क्या यही जीवन है या इसके परे कुछ और है, तो जिज्ञासा करता है व्यक्ति। और फिर जिज्ञासा से वो जब प्रश्न उसके मन में आते हैं तो वो ढूंढता है उत्तर, तब वो श्रद्धा लेकर कहीं किसी के पास जाता है। जैसे उत्तर ढूंढते हुए सुनीति के पास आए और सुनीति की बातों पर श्रद्धा विश्वास दिखलाए। तो हमारे जीवन में भी हमें श्रद्धा चाहिए, संशय नहीं। भगवान भगवद गीता में कहते संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करता है भगवान है भी कि नहीं, ये वेदों में जो लिखा है ये क्या, कौन मानता है इसको, क्यों मानना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, तो श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा दिखलाई ध्रुव महाराज ने, और फिर जब आगे चले गुरु मिले उनको, तो गुरु के वचनों में उन्होंने श्रद्धा दिखलाई। उन्होंने जो मंत्र दिया, जो मार्ग दिया, वहीं चले गए, वहीं जाकर वो मंत्र का उन्होंने जाप किया। तो गुरु के शब्दों में श्रद्धा होनी चाहिए। वैसे जो दृढ़ता ध्रुव महाराज ने दिखलाई, क्या हम सब के अंदर वो दृढ़ता है? क्या हम सब दृढ़ हैं भक्ति करने के लिए? क्या आपके जीवन में कई बार ऐसा नहीं हुआ कि आपने सोचा कि बस आज से कुछ भी हो जाए 32 माला जप निश्चित करूंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं 32 माला करके रहूंगा। दो दिन, केवल दो दिन लगते हैं हमारे इस मोह को टूटने के लिए, नहीं कर पाते हम लोग, है ना? या कोई और प्रण आज से आप लोग प्रवचन सुनते हैं, मंदिर में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, यही जीवन है, यही तो सच है, कितना झूठ है बाहर का जीवन। कब तक? जब तक मंदिर में है। बाहर निकले ये भी जीवन तो बुरा नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों दृढ़ता नहीं बनी रहती? हम चाहते हैं करना, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि ये मार्ग सही है, ये मार्ग अच्छा है। हम जानते हैं सही है, हम जानते हैं ये अच्छा, फिर वो दृढ़ता क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं बने रह पाते हैं अपने नियमों पर? एक रविवार को मंदिर आते हैं, सोचते कुछ भी हो जाए हर रविवार आएंगे, दूसरे रविवार आने लगते हैं कुछ हो जाता है छोड़ो अगले रविवार जाएंगे, कोई दृढ़ता नहीं है। एक दिन सोचते मंगल आरती आना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति होनी चाहिए, कभी रात को नींद नहीं आती तो एक दिन उठकर आ जाते हैं मंगल आरती, लेकिन क्यों नहीं रोज? तो क्या कारण है? दृढ़ता कैसे आती है, इसका मार्ग हम आपको बताते हैं। दृढ़ता के लिए सबसे पहली चीज चाहिए इच्छा, तीव्र इच्छा। इंग्लिश में जो दृढ़ता है इसको डिटर्मिनेशन कहते हैं, डी से शुरू होता है, और इस डी तक आने के लिए तीन अन्य डी चाहिए। पहला है डिजायर, इच्छा, डी। तो अगर हम दृढ़ होना चाहते हैं, दृढ़ता लाना चाहते हैं, कम से कम प्रवचन में आंखें खुले रखने के लिए दृढ़ता लाना चाहते हैं, तो इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा। जब तक इच्छा तीव्र नहीं है हम दृढ़ नहीं हो सकते। जैसे एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गए और उनसे पूछा कि मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी, आप बताइए। तो गुरु उस समय नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने कहा इधर आओ। अब अंदर आया, गुरु ने उनका सर पकड़ा, नीचे डाल दिया पानी में, अब पकड़ लिया ऐसे, और वो तड़प रहा है, दो सेकंड के लिए खाली बाहर निकाला, फिर अंदर डाल दिया उसका, और फिर वो तड़प रहा है, फिर निकाला, फिर अंदर डाल दिया। ऐसे जब तीन चार बार हो गया, उसने गुरु से प्रणाम किया, मैंने कौन सी गलती कर दी, मैंने तो आपसे यही प्रश्न पूछा था कि भगवान कब प्राप्त होंगे, आप मुझे दंड क्यों दे रहे हैं ये। तो गुरु ने कहा कि मुझे बताओ कि जिस समय तुम पानी के अंदर थे तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा था, क्या सोच रहे थे? तो उसने कहा क्या सोचूंगा, मेरे मन में एक ही विचार था कि कब मुझे हवा मिले, कब मैं सांस ले सकूं, बस। बोले और कोई विचार था? जगत में कुछ बनने का, बहुत बड़ा गुरु बनने का, कुछ खाने पीने का, कहीं घूमने का। तो उन्होंने कहा, गुरु जी ये तो हो ही नहीं सकता। अब उस समय तो मेरा एक ही विचार था कि कैसे मैं बाहर आ जाऊं। तो गुरु ने कहा कि जिस दिन तुम्हारे हृदय में भगवान को पाने की ये तीव्र इच्छा होगी, जैसी तुम्हारी तीव्र इच्छा पानी के अंदर हवा को पाने की थी, सांस लेने की थी, जिस दिन ये तीव्र इच्छा तुम्हारे अंदर हो गई, तुम भगवान को प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा नहीं। तो इसीलिए दृढ़ बनने के लिए सबसे पहले तीव्र इच्छा चाहिए। हमारी इच्छा ही नहीं है, तीव्र नहीं है, इच्छा है, कभी कभी प्रकट हो जाती है। किसी भक्त को देख लेते हैं, बड़े भक्त को, हम भी कभी भक्त बनेंगे, बस खत्म इच्छा, इतना ही होता है। वो तीव्रता नहीं है कृष्ण को देखने की। आप में से कितने लोग कृष्ण को देखना चाहते हैं, बताइए। सब लोग बड़े धीरे धीरे हाथ ऊपर करें, सोच रहे हैं कि कृष्ण को देखना है या नहीं देखना। कृष्ण को देखना चाहते हैं लेकिन हम कभी कृष्ण के बारे में सोचते नहीं हैं। आप में से कितने लोग सुबह उठते हैं या 6-7 बजे आप सोचते हैं कि अभी कृष्ण गायें चराने जा रहे होंगे, या 12 बजे सोचते हैं कि अभी बहुत धूप है, कृष्ण जंगल में गायों को चरा रहे होंगे, उनको धूप लग रही होगी, उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। कितने लोग सोचते हैं, नहीं सोचते। आपका कोई प्रियजन कहीं दूर हो, उसके विषय में आप सोचते हैं 10 बार दिन में फोन करके पूछते, खाना खाया कि नहीं खाया, करते हैं ना। लेकिन कृष्ण के विषय में हम नहीं सोचते कि क्या कर रहे होंगे, कैसे जा रहे होंगे, इस समय शाम का समय हो गया, गोधूली का, वापस आए होंगे या नहीं आए होंगे, कौन से असुर ने आज उन पर आक्रमण किया होगा, हम लोग नहीं सोचते। केवल जब कृष्ण कथा सुनते तब ध्यान आता है, हाँ कृष्ण वृंदावन में असुरों का वध करते हैं। तीव्रता नहीं है अभी कृष्ण को पाने की, कृष्ण को देखने की तीव्रता चाहिए। कब देखूं, कब देखूं मैं। जैसे आप कोई उदाहरण दीजिए, इस जगत में किसी को देखने की तीव्रता का उदाहरण कोई बताइए कि क्या होता है। जैसे व्यक्ति किसी को देखना चाहता है, कोई उदाहरण, हम उदाहरण देते हैं। अभी आपको बताया जाए कि आप कुड़ाल में इस जगह हैं, यहां से केवल 5 मिनट की दूरी पर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जितने जो भी फिल्म खान नहीं बाकी भी जो भी हैं, वो अभी अभी यहीं आ रहे हैं और अभी यहां आ रहे हैं, बस 5 मिनट में पहुंचेंगे। आप लोग देखना चाहेंगे, नहीं? बिल्कुल। कुछ लोग तो देखना चाहेंगे, लोग बोलेंगे चलो ठीक है वो भक्त नहीं है लेकिन एक बार देख तो ले दिखता कैसा है। लोगों को बड़ी आतुरता होगी, वहां खड़े रहेंगे, आ रहे किधर, आए कि नहीं, आए कि नहीं, आए कि नहीं, पहुंचे कि नहीं, अरे अरे कहीं ऐसा ना हो गाड़ी निकल जाए, हम लोग खड़े रहें यहाँ पर। हाँ, फिल्म स्टार्स होते हैं, क्रिकेट स्टार्स होते हैं, रॉक स्टार्स होते हैं, लोगों को बड़ी देखने की, बस एक बार देख ले और अगर उनके साथ फोटो खिंचाने का चांस मिल जाए तो जीवन सफल, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये एक प्रकार की तीव्रता किसी को देखने की। और कोई उदाहरण ऐसा दीजिए आप लोग, कोई और उदाहरण है कि हम किसी को देखने की बड़ी तीव्रता होती है हृदय में। हाँ, या प्रश्न कर रहे हैं या प्रश्न अभी नहीं। अभी पहले हमने जो प्रश्न किया उसका उत्तर, प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं देना चाहिए। हाँ मैं बाद में, हाँ तो आप बताइए कोई उदाहरण, कोई और ऐसा, क्रिकेट में कौन सा देश विन होगा, वेरी गुड। वर्ल्ड कप चल रहा है तो संडे प्रोग्राम खाली, 25 लोग भी नहीं मंदिर में है, क्यों, कौन देखना चाहते हैं, हाँ अब क्या, अब क्या, अब क्या, जीतेंगे कौन, वो 11 लोग, पैसा किनको मिलेगा, उन 11 लोगों को, वो लोग आकर आपको नहीं देंगे कि आपने अपना संडे का प्रोग्राम छोड़कर हमारे लिए क्रिकेट देखा, ये लीजिए 4 लाख रुपए हमारे में से, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। कितना बड़ा लोगों की देखिए मूर्खता है, 11 लोग इधर 11 लोग इधर, एक छोटी सी गेंद और एक बल्ला है बस, वो अपना आराम से वो खेलते रहते हैं, आनंद लेते हैं, और उनको देखने के लिए लाखों लोग संकीर्तन करते रहते हैं। संकीर्तन ही है ना वो, एक साथ मिलकर कीर्तन, इंडिया इंडिया इंडिया। हाँ, तो देखने का बड़ा उत्साह, बहुत अच्छा मत, धन्यवाद। और कोई मंदिर में कोई सुनिए तो बड़े, ये भाग्यवान लोगों की बात कर रहे हैं आप। ये भाग्यवान लोगों की, कभी कोई बहुत वरिष्ठ सन्यासी आ रहे हैं, कई साल बाद आ रहे हैं, तो हम लोगों को बड़ा उत्साह रहता है कि देखना है। लेकिन कृष्ण को देखने के लिए तीव्रता नहीं। जब रोज 7:30 बजे कृष्ण के दर्शन खुल रहे हैं, हम लोग बड़ी तीव्रता से खड़े नहीं रहते कि हाँ बस अब आने वाले हैं, कौन से रंग की ड्रेस पहनी होगी, कैसा श्रृंगार होगा, कोई नहीं। अब तो हम लोग रोज देखते हैं, 7:30 नहीं देखा तो 8 बजे दर्शन कर लेंगे, 9 बजे कर लेंगे, खड़े रहेंगे वहाँ, कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसीलिए इच्छा को तीव्र करना है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, सबसे पहली चीज। तो इच्छा होनी चाहिए, तो पहला डी है डिजायर। और जब इच्छा हो तो क्या इच्छा पूर्ण है? बस तीव्र इच्छा है कृष्ण को पाने की, तो पा लेंगे कृष्ण को? नहीं। दूसरा डी चाहिए और वो है डायरेक्शन, मार्ग निर्देशन। अगर हमारे अंदर इच्छा है, हम कृष्ण को पाना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें मार्ग निर्देशन चाहिए। तो केवल इच्छा पूर्ण नहीं है, मार्ग निर्देशन भी चाहिए। मार्ग निर्देशन अर्थात गुरु कहें ये ऐसा करना चाहिए, वरिष्ठ कहें ऐसा करना चाहिए, हम पूर्ण श्रद्धा से उसको करें, मार्ग निर्देशन। और सही मार्ग निर्देशन चाहिए, गलत नहीं, सही गुरु होना चाहिए, प्रामाणिक परंपरा में होना चाहिए, तो फिर हम उसका पालन करें। तो ये है डायरेक्शन अर्थात मार्ग निर्देशन, सही आपको मार्ग निर्देशन। तो क्या केवल इच्छा होना और सही मार्ग निर्देशन होना ये बहुत है? उस मार्ग निर्देशन पर चलना चाहिए, नहीं तो लाभ क्या है? नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा कि जाओ मधुवन चले जाओ, इस मंत्र का जाप करो, ये मार्ग निर्देशन था। लेकिन अगर ध्रुव महाराज करते नहीं तो क्या भगवान की प्राप्ति होती? इसीलिए तीसरा डी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अच्छी तरह से उस मार्ग निर्देशन को पालन करना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमारी संस्था में हमें बताते हैं कि हमें 16 माला जप करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, भक्तों के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो ये उनके द्वारा दिया गया मार्ग निर्देशन है। अब हमारे ऊपर है हम इसको पालन कितनी गंभीरता से करें। तो इसलिए उसका पालन होना चाहिए, जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन अर्थात नियमबद्धता, सब कुछ नियम से होना चाहिए। क्यों डिसिप्लिन चाहिए? बीमार व्यक्ति को डिसिप्लिन में रहना आवश्यक है। बीमार व्यक्ति के लिए कहा जाता है बेड पर पड़े रहो, हिलना नहीं। अगर वो हिल लेता है तो बीमार ही रहेगा। उसको कहा जाता है तुम ये खाना नहीं, खा लेता है, बीमार ही रहेगा, है ना। जैसे कभी किसी का गला खराब हो, उसको कहा जाता है कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, अब वो पी ले तो कोई लाभ नहीं है। तो डिसिप्लिन होना चाहिए जीवन में, क्योंकि हम लोग बीमार हैं, हमारी बीमारी तभी जाएगी जब हम कड़ाई से नियम का पालन करेंगे। बहुत कड़ाई से नियमों का पालन होना चाहिए, नियमबद्धता बड़ी कड़ाई से होगी तभी हमारी जो बीमारी है दूर जाएगी, हम ये भौतिक भोगों से दूर जाएंगे। तो तीसरा डी है डिसिप्लिन। तो जब हम तीव्र इच्छा रखते हैं, गुरु के मार्ग निर्देशन में चलते हैं और उसका पालन कड़ाई से करते हैं, तब हृदय में डिटर्मिनेशन, दृढ़ता आती है, तब हम दृढ़ हो जाते हैं भक्ति मार्ग में। और ये डिटर्मिनेशन हमें पांचवें डी की ओर ले जाती है, और वो है डेडिकेशन, समर्पण। तो जब तक दृढ़ता नहीं है, समर्पण नहीं आ सकता। दृढ़ होना चाहिए, भक्ति करनी है, तब समर्पण आता है। तो इसीलिए भक्ति का मार्ग, जैसे हम बता रहे थे कि ये कृपा पर आधारित है, और इस कृपा को प्राप्त करने के लिए बड़ी कड़ाई से हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने दुख को देखा, जीवन के दुख के द्वारा भक्ति की ओर मुड़े, उन्होंने श्रद्धा दिखलाई, गुरु से मिले, गुरु के वचनों में श्रद्धा दिखलाई, फिर उन्होंने पालन किया गुरु के द्वारा दिए गए मार्ग का। तो भक्ति का मार्ग क्या है, तपस्या क्या है? ध्रुव महाराज ने तपस्या की, इंद्रियों को वश में किया। तो क्या है तपस्या हमारे लिए? क्या हमें भी मधुवन चले जाना है? क्या हम भी जंगल में, हिमालय में जाकर खड़े हो जाएं ध्रुव महाराज की तरह? नहीं, हमारे लिए तपस्या है भक्ति में, भक्तों के लिए सेवा, साधना और संबंध। ये हमारी तपस्या है, सेवा, साधना और संबंध। ये तीन चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ये तीन चीजें भक्ति में अति आवश्यक है, अनिवार्य है। हमारी सेवा, हमारी साधना और हमारे संबंध। जैसे सेवा, भगवान की सेवा करना, बहुत सारी सेवाएं होती हैं, जैसे हमारे मंदिर कारवार में है जगन्नाथ जी का, तो मंदिर में कई सेवाएं हैं, अर्च्य विग्रह की सेवा करना, किचन में सेवा करना, हार बनाना, मंदिर साफ करना, मंदिर में आना, श्रवण करना, ये सारी सेवाएं हैं। लेकिन सेवा के लिए अच्छा भाव कब उत्पन्न होता है? जब हमारी साधना अच्छी होती है। अच्छी साधना होगी तो सेवा करने में बड़ी रुचि आएगी, साधना अच्छी नहीं है तो सेवा में भी रुचि चली जाती है, फिर सेवा बोझ लगने लगती है। अरे क्या, हर हफ्ते जाओ किचन में, हर हफ्ते वही कटिंग करो, हर हफ्ते डीटी में जाओ, हर हफ्ते आरती करो, सब क्या है? बोझा लगने लगता है। देखिए, जो चीज प्रेम से करनी चाहिए वो बोझा हो जाती है। क्यों? हमारी साधना अच्छी नहीं। तो इसलिए सेवा, साधना और सबसे महत्वपूर्ण इन तीनों में संबंध। अगर भक्तों में अच्छे संबंध नहीं है, आपकी साधना अच्छी है, सेवा अच्छी है, लेकिन आपके संबंध अच्छे नहीं है, आप भक्ति में टिक नहीं पाएंगे। आपकी साधना अच्छी नहीं है, सेवा अच्छी है और संबंध अच्छे हैं, तो आप भक्ति में टिक सकते हैं। कैसे? अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो भक्त आपकी साधना को अच्छा कराएंगे। जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह जप में सो रहे हैं, अगर आपका भक्तों के साथ अच्छा संबंध है तो कोई भी भक्त आपको उठा दे, प्रभु जी उठिए उठिए, साधना कीजिए, माया में मत पड़िए। लेकिन आपका संबंध अच्छा नहीं है, भक्त जानते हैं इसको अगर कुछ भी कहा तो ये गुस्से में देख देगा, कुछ बोल देगा, है ना? ऐसा होता है, कई बार हमारे अलग अलग मंदिर में हमने देखा है, भक्त सोते रहते जप करते हुए, और अगर कोई उनको उठा दे तो इतना गुस्से से देखते हैं, क्या है? सो नहीं रहा था मैं। तो अगर संबंध अच्छा नहीं है तो भक्त उठाएंगे भी नहीं, कह रहे सोने दो, कौन इसके झगड़ा करे, ये हमेशा कुछ भी कह देता है, इससे हमें कुछ नहीं करना, तो फिर आप सोते रहेंगे। सेवा अच्छी नहीं होगी आपकी तो भी भक्त का संबंध अच्छा नहीं होगा, तो कोई कुछ कहेगा नहीं। इसीलिए इन तीनों में हमारा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों से बड़ा गाढ़ा संबंध होना चाहिए, एक दूसरे की मदद के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हम कुछ, जैसे उदाहरण है भरत महाराज का, भरत महाराज ऐसे बताते हैं कि भक्ति में भाव स्थिति पर थे। कल हमने 9 स्थितियों का वर्णन किया था आपको, कौन बिना देखे उन नौ स्थितियों को बता सकते हैं? परीक्षा? हाँ, नहीं नहीं, ये नवधा भक्ति है। नौ तरीके, नौ स्थितियाँ हमने वर्णन की थी, आदो श्रद्धा, श्रद्धा से प्रारंभ होकर। हाँ, अब आप बुक मत देखिए। और कौन बताएंगे बिना देखे? हाँ हमें लगता है कुडाल आना सफल नहीं हुआ। क्योंकि आप लोग जो सुनते हैं प्रसाद खाते ही सब भूल जाते हैं। अभी प्रसाद थोड़ा लाइट बनाना चाहिए। हाँ, करना चाहिए था, गलती हमारी है। हमें एक ही प्रवचन सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम देना, तब कम से कम आज आप लोग सब बता देते। ओवरलोड हो गया, ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो हमने चर्चा की थी कि कौन, कोई और बता सकते हैं? यस, पूनम प्रभु। ओके, चलो कोई बात नहीं। और कोई? हाँ प्रभु जी। वंडरफुल, जाय। सो सबसे पहला था श्रद्धा। तो श्रद्धा से आठवां स्तर, प्रेम से एक स्तर नीचे है भाव। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, उसके बाद भाव। तो भरत महाराज उस स्तर पर थे भक्ति के। मतलब आप सोच लीजिए, कोई उनके हृदय में अनर्थ नहीं था, फिक्स एकदम श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति थी सब। 24 वर्ष की उम्र में वो राजा थे सारी पृथ्वी के, भरत। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वन में चले गए तपस्या करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। कौन कर सकता है ऐसा? 24 वर्ष की उम्र को कुछ त्यागने की होती है? आजकल लोग बोलते 24 वर्ष की उम्र तो खेलने की होती है, खाने खेलने की उम्र। इसीलिए अगर कोई ब्रह्मचारी बनता है तो उसके माता पिता बड़ा विरोध करते हैं, कह रहे इस उम्र में अभी नहीं, ब्रह्मचारी बनना है तो थोड़ा रुको, थोड़ा बाल वाल सफ़ेद हो जाए, आंखों से दिखाई नहीं दे, कानों से सुनाई नहीं दे, दो पैर की जगह तीसरे पांव पर चलने लगो डंडा लेकर, तब जाकर ब्रह्मचारी बन जाना, कोई चिंता नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं, है ना, कि वैसे भी आदमी बेकार हो जाएगा। उस समय पर कोई काम नहीं कर सकेगा, जाओ मंदिर में बैठ जाओ। भरत महाराज ने 24 वर्ष की उम्र में सब कुछ त्याग दिया, इतना बड़ा राज्य, पूरी पृथ्वी का राज्य। और आप सोचिए, हम बार बार ये कहते हैं राजा होना मतलब क्या है? आजकल के राजा की तरह नहीं है वो। आजकल के राजा जो हमारे देश के राजा या कहीं के भी हैं, वो अगर कुछ करना चाहते हैं, कोई कानून बनाना चाहते हैं, 10 तरह के विरोध हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते। पहले ऐसा नहीं था। राजा मतलब जो उसने कहा वो कानून, उसको बनाने की जरूरत नहीं होती थी कि कानून बनाएगा, काउंसिल में पास होगा, राष्ट्रपति रोक देंगे, ये होगा, कुछ नहीं। एक बार बस उसने कह दिया वो कानून। सोचिए क्या शक्ति होगी राजा की, जहां चला जाए वो उसकी भूमि है। कोई उसको पासपोर्ट वीजा नहीं लगता था, पूरी दुनिया के राजा, और जिसको चाहे जो दे दें। अच्छा, इनसे खुश हो गए, ये गांव तुम्हारा, वाह। पूरा का पूरा, आप लोगों को पता है पहले में दिया हुआ था, शायद आप लोगों के कोई पूर्वजों को मिला हो। राजा लोग गांव के गांव दे दिया करते थे, ये ठीक है, ये गांव तुम्हारा आज से, जो भी इससे उत्पन्न होगा, जो भी टैक्स आएगा, सब तुम ले लो, तुम कमाओ, सारी भूमि तुम्हारी। क्या शक्ति और क्या पावर और क्या ऐश्वर्य है उनका। आप आज दे सकते हैं, आप देना भी चाहें तो। हम लोग तो एक गुंठा लैंड मंदिर को देने के लिए घबराते हैं। तो गांव के गांव, ये गांव तुम्हारा, जाओ ले जाओ। या फिर कई बार हम लोग देखते हैं राजा ऐसे दिया करते थे, स्वयं रामचंद्र जी ने दिया है, और कोई उदाहरण क्यों दें, रामचंद्र जी ने जब वो वन में जाने वाले थे उसके पहले उन्होंने दान किया जो भी उनका था, और उसमें जो भूमि थी वो गए और उन्होंने एक हथियार ऐसे उठाया, एक डंडे जैसा, एक ब्राह्मण को भूमि चाहिए थी और उन्होंने कहा कि ये डंडा जहाँ तक जाएगा, जहाँ भी गिरेगा वो भूमि तुम्हारी। देखिए ऐसा होता था, कोई नाप के नहीं देते थे कि एक तुम्हारा ये 3 फुट इधर छोड़ो, 2 फुट इधर छोड़ो, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाती है भूमि तुम्हारी। क्या ऐश्वर्य, क्या शक्ति, और वो भी पूरी पृथ्वी के राजा थे। त्याग दिया उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में भगवान की प्राप्ति के लिए। भाव स्तर के भक्त हैं, अकेले चले गए भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए, वन में रह रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। एक दिन उन्होंने देखा कि या नदी के किनारे एक हिरणी पानी पीने के लिए आई, गर्भवती थी और पानी पी रही थी कि दूसरी ओर नदी के एक शेर था, और शेर देखकर जोर से दहाड़ा, और शेर की दहाड़ सुनकर ये घबरा गई हिरणी, और इतना घबरा गई कि उसकी मृत्यु हो गई, वहीं गिर पड़ी। लेकिन मृत्यु के पहले उसने बच्चे को जन्म दे लिया। तो भरत महाराज ने सारा दृश्य देखा तो वो सोचने लगे कि अभी ये बच्चे को कौन पालेगा, हिरणी मर गई और ये राक्षस, ये शेर है, ये खा जाएगा इसे, तो मुझे रक्षा करनी। तो वो ले आए उठाकर आश्रम में, फिर उसको बड़ा प्रेम करने लगे, बड़ा प्रेम से रखने लगे, हर समय उसकी चिंता, कहीं अगर सुबह दिखता नहीं, शाम को दिखता नहीं, दिन में दिखता नहीं, घबरा जाते कहाँ चला गया, कहीं किसी ने खा तो नहीं लिया शेर ने। और भागवत में लिखा है धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक नियमों को, पालन को भी उन्होंने त्याग दिया, त्यागना शुरू कर दिया, ध्यान नहीं देते थे उस पर, उनका ध्यान ज़्यादा हिरण पे होता था। और हिरण से इतना आसक्त होने के कारण फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो हिरण कहीं चला गया, वो तो जानवर है, थोड़ा बड़ा हुआ वो कहीं चला गया जंगल में, उसे आश्रम में रह के थोड़ी तपस्या करनी थी, तपस्या तो भरत महाराज को करनी थी, वो चला गया। और भरत महाराज यहाँ पर इतने दुखी हो गए, क्या हुआ, किसी शेर ने खा लिया, हाय हाय हाय, और उसी दुख में उनकी मृत्यु हो गई, उसी हिरण को याद करते करते, हाय हिरण कहाँ गया, और मृत्यु हो गई। और इसीलिए अगला जन्म उन्हें एक हिरण का लेना पड़ा। भरत महाराज भाव भक्त के स्तर पर, भाव भक्ति के स्तर पर, लेकिन एक हिरण बनना पड़ा। हिरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डियर। तो भरत महाराज के पास केवल एक डियर था, हमारे तो बहुत सारे डियर हैं, है ना, है कि नहीं, बहुत सारे डियर हैं, डियर मदर, डियर फादर, डियर वाइफ, डियर चिल्ड्रन, सारे डियर ही हैं, है ना। तो जब सोचिए कि एक डियर के कारण भरत महाराज की यह हालत हुई, तो हमारे, हमारी क्या हालत होगी अगर हम इतने आसक्त रहेंगे इतने डियर से। और क्यों हुआ ये, हम ये प्रसंग इसलिए सुना रहे थे कि क्यों हुआ, भक्त नहीं थे वहां पर। जिस समय भरत महाराज अपने आध्यात्मिक नियमों को नज़रअंदाज कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, उस समय भरत महाराज के पास कोई भक्त नहीं था, वो अकेले थे। अगर कोई भक्त होता तो वो कह देता, प्रभु छोड़ो हिरण को, जपा करो बैठ के, ये जपा के समय आप जाकर हिरण को ढूंढ रहे हो, ये मत करो, आपने माला करना बंद कर दिया, आज आपने 16 माला ही नहीं किया, कोई तो कह देता उनसे, लेकिन कोई था ही नहीं, अकेले थे। तो उनको लगा जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसीलिए भक्तों का संबंध बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। संबंध पर फिर हमारी साधना अच्छी हो सकती है, सेवा अच्छी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति में ये तीनों चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी हैं तीनों चीज़ें, सेवा, साधना और संबंध। हमें बहुत अच्छी साधना करनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करें, अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, श्रवण करें, कथाओं का श्रवण जब हम करते हैं मंदिर में, तो ये सारे साधना के अंग हैं। तो अच्छी तरह जप करना, अच्छी तरह अध्ययन करना, अच्छी तरह श्रवण करना, ये सब साधना है। ऐसा नहीं है कि बस मंदिर में आए हैं इसलिए प्रवचन सुनना है, नहीं, वो साधना का अंग है। तो जो लाभ बड़े बड़े योगियों को, तपस्वियों को हिमालय में बर्फ में बैठकर साधना करने का मिलता है, वो हमें यहाँ इस कमरे में कृष्ण कथा सुनने का मिल जाता है। बस कृष्ण कथा सुनने से वही लाभ मिल जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है हिमालय में जाकर एक पांव पर खड़े होकर बर्फ में तपस्या करने की, आप आराम से पंखे में बैठकर तपस्या कीजिए। ये साधना है, कलयुग की साधना, भगवान के नाम का उच्चारण। तो इसीलिए साधना में क्या क्या आता है, सबसे पहले जप करना, भगवान के कथाओं का श्रवण करना और अध्ययन करना शास्त्रों का, ये हमारी साधना के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो ये साधना हमारी होनी चाहिए। और साथ साथ साधना का अंग ये भी है कि हम अपने अंदर अच्छे गुणों को लाने का प्रयास करें। सद्गुण संपन्न होना चाहिए एक भक्त को। तो कौन कौन से गुण हैं जो हमें अपने अंदर लाने चाहिए? भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान बहुत सारे गुणों का वर्णन करते हैं जो एक भक्त के अंदर होने चाहिए। वो कहते हैं, अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। भगवान कहते हैं कि सबसे पहला गुण एक भक्त को होना चाहिए अमानित्वम, मान की कामना नहीं करना, अमानित्वम। और करीब भगवान ने 19 गुण बताए, 20 गुण उसमें, उन श्लोकों में। और भगवान कहते हैं इनको बताने के बाद कि इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है, बस यही यही ज्ञान है, यही सार है। तो 20 गुणों को उन्होंने वर्णन किया, हाँ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने भक्ति का भी वर्णन किया कि भक्ति होनी चाहिए। लेकिन पहला वर्णन किया अमानित्वम, मान की कामना नहीं होनी चाहिए भक्त को, अमानित्वम। अदम्बित्वम, दंभ नहीं होना चाहिए, अहंकार। दंभ मतलब घमंड, जानते नहीं मैं कौन हूं, मुझे नीचे बैठने को बोल रहे हो तुम। अदम्बित्वम होना चाहिए, कोई अहंकार नहीं, कोई दंभ नहीं, घमंड नहीं। अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा, हमारे अंदर अहिंसा की भावना होनी चाहिए। अहिंसा मतलब, अहिंसा तीन स्तर पर होती है। पहला स्तर शरीर, किसी को चाकू लेकर काट डालना, तलवार लेकर मार देना, गोली मार देना, ये हिंसा है। तो अहिंसा इसको नहीं करना। तो शरीर के स्तर की हिंसा अर्थात काटना इत्यादि, ये पहले स्तर की हिंसा है। दूसरा, मन के स्तर की हिंसा अर्थात अपमान कर देना, कटु शब्द कह देना। महाभारत में बहुत सुंदर वर्णन है कि जब एक बार युधिष्ठिर और कर्ण का युद्ध हो रहा था, युद्ध के समय अर्जुन कहीं दूर थे और युधिष्ठिर प्रायः हार गए कर्ण से। अब ऐसा समय था कि बहुत घायल हो कर दिया युधिष्ठिर को कर्ण ने, और बस अब तीर निकालना और मार देना। लेकिन कर्ण को अपना वचन याद आ गया, मैंने वचन दिया है कुंती को, 5 पुत्र जीवित रहेंगे तुम्हारे। 6 पुत्र थे कुंती के कर्ण को मिलाकर, तो कर्ण ने वचन दिया था कि तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। मैं वचन देता हूँ, या तो मैं जीवित रहूँगा या अर्जुन जीवित रहेगा, क्योंकि उसको अर्जुन को मारना था। बहुत क्रोध था, देखिए कितना व्यक्ति में द्वेष हो सकता है, जानते हुए कि मेरा छोटा भाई है, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं उसको तो मारूंगा, बाकी हाँ मेरे भाई है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैं मानता हूं। देखिए कितना द्वेष, ये पता चलने के बाद भी कि मेरा ही भाई है, छोटा भाई है मेरा, कुंती का पुत्र है। अर्जुन तो माद्री का पुत्र भी नहीं था, कुंती ही पुत्र था। मेरा ही भाई है, अपना भाई, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने वचन दिया, हमारे 5 पुत्र रहेंगे, या मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा। तो छोड़ दिया युधिष्ठिर महाराज को, मारा नहीं, और युधिष्ठिर का अपमान कर दिया कि जाओ युद्ध करना सीख कर आओ। दरअसल वो जानते थे मेरे भाई है, इसलिए मारना नहीं चाहते थे। क्योंकि अगर युधिष्ठिर को पता होता कि कर्ण उसका भाई है तो युधिष्ठिर कभी युद्ध नहीं करते। देखिए लोग कहते हैं ना कि कर्ण ने छोड़ दिया युधिष्ठिर को, कितना बड़ा कार्य किया, लेकिन युधिष्ठिर को बताया नहीं गया केवल इसीलिए। अगर युधिष्ठिर को कहीं से पता चल जाता कि कर्ण मेरा भाई है तो कभी युद्ध नहीं करता, तुरंत जाके सब कुछ समर्पण कर देता, ये लीजिए आपको जो करना है कीजिए, हम आपकी शरण में खड़े हैं, और इसीलिए उसको बताया नहीं गया। तो युधिष्ठिर का अपमान कर दिया, युधिष्ठिर चले गए अपने कैंप में वापस। वहां अर्जुन को पता चला, संदेश मिला कि कर्ण ने युधिष्ठिर को बहुत आहत कर दिया, चोट पहुंचाई। तो अर्जुन भागते हुए आए सब कुछ छोड़कर युधिष्ठिर को देखने के लिए, क्योंकि दो बातें, पहली चीज युधिष्ठिर से बहुत प्रेम था, भाई हैं, और दूसरी कर्ण ने किया था इसीलिए अर्जुन को भी गुस्सा था। तो आ गए वो भी, और तुरंत जैसे ही अंदर प्रवेश किया देखने के लिए, युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन आए और उनसे प्रश्न किया, अर्जुन तुमने कर्ण का वध किया? अर्जुन ने कहा, वध नहीं, मैंने तो सुना कि उसने आपको क्षति पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, घायल हो गए आप, मैं तो आपको देखने आ गया। तो उन्होंने कहा, ये जो तुमने धनुष धारण किया हुआ है ना तुम्हारे कंधों पर, गांडीव धनुष, फेंक दो इसको, तुम योग्य नहीं हो इसके। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आ गया, अरे आप सोचिए बेचारा भाई का प्रेम है, भागकर आ रहा है देखने के लिए कि भाई कैसा है, क्या हुआ, और यहां भाई कह रहा है निकाल दो, तुम्हारा योग्यता नहीं है। तो अर्जुन ने तुरंत तलवार निकाल ली, कृष्ण भी थे साथ में, कृष्ण ने पूछ, क्या हो गया भाई, अचानक क्या हुआ, तलवार क्यों निकाली? अर्जुन ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा की है, अगर कोई भी व्यक्ति मुझे मेरे ये जो धनुष है इसको अपने कंधे से निकाल देने के लिए कहेगा, योग्य नहीं हो कहेगा, मैं उसका वध कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, अब मैं युधिष्ठिर को मार दूंगा। कृष्ण ने बोला, अरे ये क्या हो गया, सारी महाभारत चेंज हो रही है यहाँ तो, मैं तो कुछ और सोच रहा था, कृष्ण ने कुछ और योजना बनाई थी, यहाँ तो सब गड़बड़ हो रहा है, युधिष्ठिर को मार देगा, युद्ध कौन करेगा? तो उन्होंने कहा, रुको रुको रुको, क्या बात क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं मुझे तो मारना है, वध करना है। तो उस समय कृष्ण ने कहा, ठीक है एक काम करो, तुम युधिष्ठिर का अपमान करो, क्योंकि बड़े भाई के लिए छोटे भाई से ऐसे अपमान के शब्द, और वैसे भी एक क्षत्रिय के लिए अपमान सहन करना ये मृत्यु के समान है, तो तुम अपमान कर दो उसका, यहां पर मतलब उसकी मृत्यु हो गई, वो मृत्यु के समान है। तो उस समय अर्जुन ने धड़ाधड़ बड़ा अपमान किया, सारा युद्ध तुम्हारे कारण हुआ है, सब जुआ तुमने ही खेला था ना, तुमको शौक था खेलने का इत्यादि, बड़ा अपमान कर दिया। और उसके बाद उसने तलवार निकाली और अपने गले पर रख ली। तो कृष्ण का अब क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैंने प्रतिज्ञा की है, जो भी मेरे भाई का अपमान करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। कृष्ण ने सर पर हाथ मारा कि ये क्या क्षत्रिय हैं, ऐसे जब मन में आया प्रतिज्ञा कर लेते हैं। तो अपमान, बात हो रही थी कि अपमान मृत्यु के समान है। तो एक हिंसा होती है शरीर के स्तर पर, दूसरी हिंसा होती है मन के स्तर पर, और तीसरी हिंसा होती है आत्मा के स्तर पर। आत्मा को श्री कृष्ण से दूर रखना ये सबसे बड़ी हिंसा है। तो अगर हम अहिंसा परमो धर्म, जो भगवान बुद्ध ने प्रचार किया, सही दृष्टि में पालन करना चाहते हैं तो हमें हर जीव को कृष्ण के निकट लाना चाहिए। ये सबसे बड़ी अहिंसा है, ये परम धर्म है जिसका वर्णन बुद्ध कर रहे थे, अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि आत्मा के प्रति हिंसा क्या है, उसको कृष्ण से दूर रखना। प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर आप किसी के शरीर को काट देते हो उसको तुरंत दूसरा शरीर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप आत्मा की हिंसा करते हो, आत्मा को कृष्ण से दूर रखते हो, तो वो कई कई जन्मों के लिए बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेगा, इसलिए वो बड़ी हिंसा। ईशोपनिषद में कहा गया है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रत्याविगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनः। उसमें कहा गया है कि जो आत्मा के हत्यारे हैं, हत्यारे मतलब जो आत्मा को कृष्ण से दूर रखते हैं, तो ऐसे लोग कोई भी क्यों ना हो, ये के अगर वो आत्मा को कृष्ण से दूर रखते हैं, हिंसा करते हैं, तो उनको क्या मिलता है? असूर्या नाम ते लोका, ऐसे लोक में जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है। अंधेना तमसावृता, अंधकार है, अज्ञान से भरा हुआ है। तमस आवृत, अंधेन तमसावृता, तो वहां वो लोग जाते हैं मृत्यु के बाद। इसीलिए सबसे बड़ी हिंसा आत्मा की स्तर की हिंसा है। तो अगर हमें सही दृष्टि में अहिंसा का पालन करना है तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। ये सबसे बड़ी अहिंसा है। तो ऐसे अहिंसा भगवान कहते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति। क्षांति मतलब अपनी इंद्रियों को वश में रखना। आचार्य उपासनम, गुरु की उपासना करना, उनकी पूजा करना। गुरु की पूजा कैसे होती है? केवल अगरबत्ती जलाकर गुरु की पूजा नहीं होती है, या फिर जोर जोर से चिल्लाकर जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। गुरु के आदेशों का पालन करने से, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से और कृष्ण भक्ति करने से। एक सच्चा गुरु, एक प्रामाणिक गुरु तब प्रसन्न होता है जब शिष्य भक्ति करता है, और किसी चीज से वो प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर वो बाकी किसी भौतिक चीज से प्रसन्न है तो वो सच्चा गुरु नहीं है। आपने उसको जाके बहुत कुछ दे दिया, वो प्रसन्न हो गया, बस बस 1,00,000 रुपया दिया, कृष्ण तुम्हारे, झूठा है, धोखेबाज है। कृष्ण को बेच नहीं सकते हैं 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये, 50,00,000 रुपये, 1,00,000,000 रुपये में। इसीलिए सच्चा गुरु वो है जब देखता है कि भक्त भक्ति कर रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है, इसमें उसकी प्रसन्नता है, वो सच्चा गुरु है। तो इसलिए ऐसी भक्ति, ऐसे गुणों को हमें उत्पन्न करना, ये हमारी साधना का अंग है। और इस्कॉन संस्था में हमारी साधना प्रारंभ होती है सुबह, मंगल आरती, ये साधना का अंग है। जपा करना, फिर गुरु पूजा करना, दर्शन करना, भागवत सुनना, ये सब हमारी साधना के अंग है। और सेवा, साधना और संबंध, और संबंध हमारे, हम लोग कल भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं वैष्णवों के संबंध के लिए, तो हमारे संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए एक परिवार की तरह, जैसे यहाँ हम लोग पिछले 3 दिनों से रह रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें दृढ़ता ला सकती हैं, जैसे ध्रुव महाराज के हृदय में दृढ़ता आई और वो भगवान को प्राप्त कर सके। तो प्रार्थना करते हैं नारद मुनि और अन्य सभी पूर्ववर्ती आचार्यों से कि जिस प्रकार उन्होंने ज्ञान दिया ध्रुव महाराज को, ऐसे ही परंपरा के द्वारा हम सबको ये ज्ञान प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो, और उस कृपा के आधार पर हम भगवान की भक्ति कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न? यस। जो भी कार्य भक्ति में किया जाता है वो फल्गु नहीं हो सकता। जो उस समय किया वो उस समय का नियम था। घर को त्यागना ये उस युग का, उस समय का नियम था भक्ति करने के लिए, तो उन्होंने किया। लेकिन आज अगर कोई करता है तो हो सकता है वो फल्गु वैराग्य हो, क्योंकि आज वो नियम नहीं है। लेकिन उस समय जो उन्होंने किया वो नियम था, तो इसीलिए वो संपूर्ण वैराग्य था, कृष्ण भक्ति का वैराग्य, ऐसा वैराग्य जो भक्ति को जन्म देता है। वैराग्य कई प्रकार के होते हैं। एक भक्ति जनित वैराग्य कहते हैं। भक्ति जनित मतलब जो भक्ति से उत्पन्न होता है, उनके हृदय में भक्ति थी इसलिए वैराग्य उत्पन्न हो गया, वो सच्चा वैराग्य है जो भक्ति से उत्पन्न होता, भक्ति जनित वैराग्य। लेकिन कभी कभी भोग से भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया, अलग अलग प्रकार के वैराग्यों का अलग अलग उदाहरण देकर। जैसे पिंगला का उदाहरण दिया गया है, तो वो एक वैश्या थी, रोज उसका काम था गलत कार्य करना, लेकिन उसके हृदय में एक दिन अचानक वैराग्य उत्पन्न हो गया, तो वो तो कोई भक्ति से नहीं हुआ। तो इस तरह के अलग अलग वैराग्य हैं, लेकिन भरत महाराज का वैराग्य भक्ति से उत्पन्न था, इसीलिए संपूर्ण था और भक्ति में ही था, इसलिए फल्गु नहीं था। और कोई प्रश्न? आचार्य और हरे कृष्ण, आचार्य और मंजरी, मंजरियां आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा करती हैं। उनकी उम्र 10 से 12 वर्ष तक रहती है, उनकी सेवा फिक्स होती है और वे आध्यात्मिक जगत में सदैव सदत कृष्ण का स्मरण और कृष्ण की सेवा करती हैं। वही मंजरियां जब आचार्यों के रूप में यहाँ पर आती हैं तो फिर वो एक शरीर को धारण करती हैं जो बढ़ता है, जो 10-12 साल का नहीं रहता, जैसे शिला प्रभुपाद हैं या फिर भक्ति विनोद ठाकुर हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सब आचार्य हैं। और ये आचार्य जब यहाँ आते हैं तो फिर वो एक शरीर धारण करते हैं इस जगत का, जो बढ़ता है, जो वृद्ध होता है, जिसमें रोग होते हैं। हम उससे प्रभावित नहीं होते लेकिन ये धारण करते हैं। और यहाँ उनका प्रमुख कार्य कृष्ण की सेवा दूसरे रूप में होती है। यहाँ कृष्ण की सेवा वो एक अपने आचरण से और अपने द्वारा दिए गए ज्ञान से करते हैं, वहाँ वो सेवा प्रत्यक्ष करते हैं। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि वहाँ किसी की सेवा है केवल भगवान के लिए फूल तोड़ कर लाना, लवंग देना, पान देना, ये केवल फिक्स सेवा, तो सीधे सेवा है। तो इसी तरह यहाँ भी सेवा करते हैं लेकिन थोड़ी सी अलग रूप में। यहाँ ज्ञान बांटते हैं, लोगों को भक्ति में लगाते हैं, तो ये आचार्यों का कार्य है। लेकिन मूलतः दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि वो कौन है। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक भजन में लिखा है कि वो कौन है, कमल मंजरी नाम, उनका नाम कमल मंजरी है। वयस 12.5 वर्ष, वो लिखते हैं कि मेरी उम्र 12.5 वर्ष है, नीले रंग की साड़ी पहनती हैं, ये सब उन्होंने अपने आप वर्णन कर दिया। तो इसका अर्थ है वो जानते हैं वो कौन है। हाँ, सब प्रकट नहीं करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक भजन में कहीं लिख दिया, वो भी बहुत किसी को पता नहीं, अभी कोई अब लोगों को अरे अरे भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, तब इतना नहीं पता था। तो वो प्रकट नहीं करें लेकिन वो अंदर से जानते हैं वो कौन है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? यस, कौरवों को, हाँ, कौरवों को श्री कृष्ण ने मारा, उनको मोक्ष मिला कि नहीं मिला, आपको क्या लगता है? दुर्योधन जैसा अधर्मी, पापी, नीच, इसको मिला होगा मोक्ष? शायद दिया होगा। कितने लोग मानते हैं उनको मोक्ष मिला, कौरवों को? आप में से हाथ ऊपर कीजिए जो सोचते हैं कि कौरवों को मोक्ष मिला। अच्छा, बहुत लोग सोचते नहीं मिला। इसका उत्तर श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में दिया गया है, उद्धव देते हैं। जब उद्धव विदुर जी से मिले तो विदुर जी ने प्रश्न किया, क्या हुआ, कृष्ण कैसे इत्यादि। तब उद्धव ने बताया कि अरे तुम्हें कुछ पता नहीं, युद्ध हो गया और सब मारे गए, और उस समय ये जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा, तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थस्य पूत पद्मपुरस्य। वो कहते हैं कि वर्णन कर रहे थे अर्जुन इत्यादि, फिर कहा कि तथैव चान्य, वहां पर बहुत सारे अन्य वीर थे। तथैव चान्य नरवीर लोका, तथैव चान्य बहुत अन्य मतलब बहुत सारे और थे, वीर थे वहां पर। ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम, और जब वो मर रहे थे तो कृष्ण का मुख देख रहे थे, कृष्ण मुखारविंदम। नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम, अपने नेत्रों से वो अमृत का पान कर रहे थे कृष्ण के मुखारविंद को देखते हुए। नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थस्य पूतः पद्मपुरस्य, और वो सब वैकुंठ को गए पद्मपुरस्य। पद्मपुरस्य मतलब सर्वोच्च स्थान। और क्यों गए उसका एक वर्णन उन्होंने किया, पार्थस्य पूतः। तो प्रश्न ये आता है कि इतने विरोधी करने वाले, इतना अधर्म करने वाले, जो स्वयं साक्षात भगवान का विरोध कर रहे हैं, वो कैसे वैकुंठ में चले गए। प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भी मारे गए वो सब वैकुंठ में गए। तो फिर ऐसा कैसे हुआ, अधर्मी लोग अगर जाने लगे वैकुंठ में तो फिर हम लोग धर्म का पालन क्यों करें, फिर हम भी अधर्मी बन जाते हैं। तो उसका उत्तर उद्धव ने दिया, पार्थस्य पूतः पद्मपुरस्य, कि जब वो मर रहे थे तो भले उनके हृदय अशुद्ध थे, लेकिन जब पार्थ, जब अर्जुन के तीर उनके हृदय में लगते थे, तो क्योंकि एक शुद्ध भक्त के द्वारा छोड़ा गया तीर है, वो उनके हृदय को शुद्ध कर देता था और फिर वो भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इसीलिए जितने भी लोग मारे गए, एक कारण कि उन्होंने मरते समय श्री कृष्ण के दर्शन किए। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि अगर कोई मरते समय मेरा स्मरण भी कर ले, देखने की बात तो दूर है। भगवान कहते हैं कि जो जो स्मरण आप करते हो मृत्यु के समय, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, कि जो जो आप स्मरण करते हो उसी को प्राप्त होते हो। लेकिन अंतकाले च मामेव, उसको कहने के बाद भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर अंतकाल में ये कलेवर, ये शरीर छोड़ते समय कोई मेरा स्मरण कर लेता है तो उसमें कोई संशय नहीं है कि वो मेरे पास आता है। तो जब स्मरण करने से जा सकते हैं, साक्षात सामने होंगे तो क्यों नहीं जाएंगे। इसीलिए सब लोग गए। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? यस भगवान प्रभु, एक मिनट, भगवान प्रभु बहुत समय से हाथ उठा रहे हैं, कोई ना कोई वो हाथ उठाते दूसरा प्रश्न, फिर हाथ उठाते फिर कोई दूसरा प्रश्न कर लेता है। यस भगवान प्रभु, थोड़ा जोर से। सांख्य शांति, हाँ शांति मतलब इंद्रियों का दमन। शांति वो शांति नहीं है, पीसफुल शांति यानी इंद्रियों को शांत रखना, आत्मसंयम, क्षमा दमह, ये गुण है ना भक्त में होने चाहिए। तो क्षमा दमह मतलब दमन करना, शमन करना, दबाना, जो अग्नि जल रही है उसको दबाना। तो शांति मतलब आत्मसंयम। यस
ये जो
नहीं, उनको वैकुंठ मिला, उन्हें सायुज्य मुक्ति नहीं मिली। प्रभुपाद लिखते हैं वो सब वैकुंठ को गए, क्योंकि वो भगवान के रूप को देखकर मृत्यु हुई। सायुज्य मुक्ति उसको मिलती है जो भगवान को स्वीकार नहीं करता, नकार देता है, रूप को स्वीकार नहीं करता। लेकिन यहाँ तो उन्होंने रूप को स्वीकारा, और क्योंकि उनके हृदय शुद्ध हो गए, शुद्ध हृदय से सारे वो प्रार्थना करते हुए गए, इसलिए वो वैकुंठ गए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वो सब वैकुंठ को गए, सायुज्य मुक्ति नहीं। सायुज्य मुक्ति कुछ असुरों को मिली जिनको भगवान ने मारा, जैसे कंस इत्यादि, शिशुपाल, कंस इत्यादि, उनको मिली निश्चित। लेकिन यहाँ पर जितने भी मरे वो सब भगवान के धाम को प्राप्त। यस, हाँ स्वर्ग में, हाँ दुर्योधन को, हाँ प्रश्न यह है कि महाभारत में वर्णन है कि मृत्यु के बाद या मृत्यु हुई नहीं, युधिष्ठिर महाराज सीधे स्वर्ग में चले गए, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो स्वर्ग में उन्होंने दुर्योधन को देखा, वह कर्ण को देखा, सब ऐसे बैठे आनंद ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वो लोग स्वर्ग गए, वैकुंठ नहीं गए। ठीक है, आप लोगों को स्वर्ग और वैकुंठ में अंतर मालूम है? मालूम है या नहीं कि सब एक समान है? क्या अंतर है स्वर्ग और वैकुंठ में? हाँ मत जी, क्या अंतर है? स्वर्ग पहला है, बाद में वैकुंठ है, बस इतना ही अंतर है। तो फिर जहां पहले पहुंचे वहां चले जाना चाहिए, भगवान का धाम है। और स्वर्ग वैकुंठ में दुख नहीं है, स्वर्ग में दुख है। अरे आप गए नहीं लगता है स्वर्ग में। मेनका, रंभा, उर्वशी, नंदन कानन वन, ये कहाँ वैकुंठ में, स्वर्ग में है, कहाँ दुख है फिर? हाँ, वैकुंठ और स्वर्ग में यही अंतर है कि स्वर्ग इस भौतिक जगत में है और इसका नाश होता है, शाश्वत नहीं है, और वैकुंठ ये आध्यात्मिक जगत है जिसका कभी नाश नहीं होता, ये भगवान का धाम है। स्वर्ग भगवान का धाम नहीं है, जबकि भगवान रहते हैं वहाँ, लेकिन उनका धाम नहीं है। ठीक है, हाँ। तो प्रश्न एक, अभी वो प्रश्न एक प्रश्न पूरा नहीं हुआ, उत्तर अभी केवल स्वर्ग और वैकुंठ का अंतर बताया। तो फिर वहाँ तो पता चलता है कि दुर्योधन इत्यादि स्वर्ग में गए, फिर वैकुंठ में गए, ऐसे कैसे हम मान सकते हैं? दरअसल दुर्योधन इत्यादि भी स्वर्ग नहीं गए थे, ये केवल एक परीक्षा थी युधिष्ठिर महाराज की। युधिष्ठिर महाराज के जीवन में तीन परीक्षाएं हुई, जिनमें उनको देखा गया कि वो ठीक हैं या नहीं। पहली परीक्षा यक्ष संवाद में हुई, आप लोग को पता है यक्ष संवाद, जब चारों भाई गए पानी लेने के लिए, पहले सहदेव गए फिर नकुल गए, तो वहाँ पर आवाज़ आई कि भाई पानी पीना नहीं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो सहदेव ने बोलो बाद में बहुत प्यास लगी है, मर गए, पानी पीते ही मर गए, वहीं गिर गए। नकुल आए वो भी मर गए, अर्जुन आए बहुत प्यास लगी थी, अर्जुन ने पानी लिया पीने जा रहे हैं, तो बोले देखो अगर तुमने गए तुम्हारे भाइयों की तरह तुम भी मर जाओगे। अर्जुन ने कहा कौन है, जो भी है मैं देख लूँगा, मेरे पास धनुष है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। पानी पी लिया, वो भी मर गए। भीम आए, भीम को भी यही कहा देखो तुमने किया तो तुम्हारे भाइयों को। भीम ने कहा जानते नहीं कौन हूँ मैं, मुझसे कह रहे हो, जो भी हो सामने देख लूँगा उसको। पानी, वो भी मर गए। तो युधिष्ठिर आए थे, तो युधिष्ठिर से भी कहा, तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है बताइए क्या प्रश्न है। तो यक्ष ने करीब 100 प्रश्न पूछे थे युधिष्ठिर महाराज से, एक आध नहीं। पहले तो कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, युधिष्ठिर में ठीक है, तो धड़ाधड़ पूरा क्विज हो गया। तो 100 से अधिक प्रश्न पूछे, उसमें से बड़े प्रसिद्ध प्रश्न भी हैं। जैसे एक प्रश्न कई बार प्रभुपाद कोट किया करते थे कि उनसे प्रश्न किया गया कि इस जगत में सबसे आश्चर्य की चीज़ क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य, परम आश्चर्य क्या है। और बहुत सुंदर उत्तर दिया युधिष्ठिर महाराज ने, वो कहते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्य अतः परम। वो कहते हैं रोज देखते हैं, अहनि अहनि, रोज रोज देख रहे हैं, अहनि अहनि भूतानि, कितने सारे लोग गच्छन्ति जा रहे हैं यमालय, मतलब मृत्यु हो रही है, लेकिन शेषा, शेषा मतलब जो बचे हुए हैं उनका क्या इच्छा है, स्थावरम् इच्छन्ति, कि वो सोचते कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, वो मरा ठीक है, ये मरा ठीक है, ये मैं कभी नहीं मरूंगा, शेषा स्थावरम इच्छन्ति, उनकी इच्छा मैं सदैव बना रहूं। तो किम आश्चर्य अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। तो यक्ष ने कहा यस बहुत अच्छा। तो ये पहली परीक्षा थी उनकी। दूसरी परीक्षा उनकी हुई जब वो जा रहे थे, तो उनको लेने के लिए इंद्र आए विमान से स्वर्ग में जाने के लिए, कि आइए युधिष्ठिर महाराज आप बैठिए और चलिए। तो उनके साथ साथ एक कुत्ता चल रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा इसको भी लेके जाना पड़ेगा। इंद्र ने कहा अरे महाराज आपको मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, मालूम है ना स्वर्ग में वहाँ कुत्ते उत्ते के लिए स्थान नहीं है, तो कुत्ते को नहीं लेके जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कुत्ते को नहीं ले जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, मैं इसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ, इतने समय से मेरे साथ चल रहा है। तो बहुत समझाया इंद्र ने, अरे युधिष्ठिर महाराज कुत्ता है ये, तो कहीं आ जाए अगर यज्ञ इत्यादि में तो अशुद्ध हो जाता है यज्ञ पूरा, उसको मारकर भगाया जाता है, तो आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं कुत्ते की, आप आइए आप अपना सारा जीवन खराब मत कीजिए, आपके लिए तैयार है स्वर्ग मिलना है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं, जाना है तो कुत्ता साथ में जाएगा, नहीं तो फिर लेके गए। तो ये दूसरी परीक्षा थी, क्योंकि वो कुत्ता नहीं था धर्मराज थे वो, तो दूसरी परीक्षा हुई थी कि क्या वो अंत समय में भी अपनी प्रगति से आसक्त हैं या उस समय भी दूसरों का भला चाहते हैं। तो ये दूसरी और तीसरी परीक्षा थी स्वर्ग में। तो जैसे ही वो पहुंचे स्वर्ग में, देखा दुर्योधन कर्ण दुशासन वाह आराम से आनंद ले रहे, खैर युधिष्ठिर महाराज ने कहा होगा, आश्चर्य बड़ा हुआ कि अरे ये लोग यहाँ कैसे स्वर्ग में। तो वो ढूंढ रहे थे अपने भाइयों को, उन्होंने कहा मेरे भाई कहाँ हैं। तो इंद्र ने एक दूत को बुलाया, इनको जरा भाइयों को दिखा ला। तो चलिए चलता रहा वो, चल रहे हैं पीछे पीछे, थोड़ी दूर तक पहुँच गए और फिर ऐसे स्थान पर पहुँचे बहुत बदबू आने लग गई, गंदगी थी वहाँ पर, बहुत गंदी बदबू कष्ट, और फिर इतना वो स्थान खराब था कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा बस बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता, ये बहुत हो गया, इससे आगे नहीं जा सकता, तो कहाँ ले जा रहे हो मुझे। तो दूत ने कहा ठीक है आप यहीं रहिए। तो वहीं से उनको आवाजें सुनाई दी, अर्जुन की, भीम की, नकुल की, सहदेव की, बचाइए बचाइए मुझे बचाइए। युधिष्ठिर महाराज ने ये क्या हो गया, दुर्योधन बैठा है स्वर्ग में, कर्ण बैठा है स्वर्ग में, मेरे भाई नरक में, ये क्या है। बचाइए मुझे बचाइए, यहाँ बहुत कष्ट है युधिष्ठिर महाराज, बस आप ही बचा सकते हैं। तो युधिष्ठिर बड़े चक्कर में पड़ गए, ये क्या हो गया, मेरे भाइयों को नरक मिला और इन पापियों अधर्मियों को स्वर्ग मिला। तो उस समय फिर दूत ने कहा ठीक है महाराज आपने देख लिया, अब चलिए आपके लिए स्वर्ग है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। अरे तो क्या हो, बोले मैं यहीं रहूँगा। महाराज इतनी गंदी जगह, इतना बदबू, इतना कष्ट, बोले मेरे भाई यहाँ पर है मैं यहीं रहूँगा, अगर जो मेरे भाइयों की गति है वही मेरी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो कार्य उन्होंने किया वो मैंने भी किया, तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। दूत ने कहा नहीं नहीं मुझे आदेश है कि बस आपको यहाँ तक दिखा के वापस लाना है। बोला तुम जाओ मैं नहीं जाऊँगा। फिर उस समय सब हट गया, कुछ नहीं था, ना वो नरक था, ना चारों पांडव नरक में दुख भोग रहे थे, कुछ नहीं। और फिर इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा ये तुम्हारी परीक्षा थी। तो इसका अर्थ क्या था, वो भी नहीं था, वो स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं था, वो दिखाया गया था युधिष्ठिर महाराज को खाली उनकी परीक्षा के लिए। तो इसीलिए गए तो सब वैकुंठ में थे। और फिर वहाँ से युधिष्ठिर महाराज आगे वैकुंठ में गए, तो ऐसा नहीं कि केवल स्वर्ग में रहे, आगे वहाँ से वैकुंठ में गए। हाँ जी, पांडव स्वर्ग क्यों मिला, अभी यही बता रहे थे कि स्वर्ग मिला नहीं उन्हें, वो केवल परीक्षा थी युधिष्ठिर महाराज के लिए, केवल दिखाया गया था, कुछ था नहीं वैसा, केवल उनकी परीक्षा लेने के लिए बस। हाँ वैसा हुआ, तो महाभारत ने उसके बाद वर्णन नहीं किया, इसलिए लोग सोचते हैं कि केवल स्वर्ग में गए, लेकिन भागवत इत्यादि में उसका वर्णन किया कि वहाँ गए, उसके बाद फिर वो वैकुंठ चले गए। तो दोनों वर्णन ठीक हैं, कोई गलती नहीं है। यमराज विदुर के रूप में आए थे, धर्मराज के अंश थे युधिष्ठिर महाराज। यस, कोई प्रश्न दूसरा राजवीर? सेवा का भाव कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा बढ़िया प्रश्न है। जब हम सेवा करते हैं तो सबसे पहला भाव हमारा कृतज्ञता का होना चाहिए, कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, कि मुझे ये सेवा मिली, ये मेरा भाग्य है। तो पहला भाव ये होना चाहिए, हमें ये उसको बोझ नहीं समझना चाहिए। जैसे आज हमने देखा किचन में माताजी लोग बड़े अच्छे से सेवा कर रहे थे, लगे हुए थे सब, कोई पूड़ी बना रहा है, कोई गुलाब जामुन बना रहा है। अरे अरे, बोलना नहीं चाहिए था हमें, अभी आप लोगों को बैठने में तकलीफ होगी ना, आप बोलोगे बस 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 अभी वहाँ जाना। तो बहुत अच्छे से सब और बड़े प्रसन्नता से सेवा कर रहे थे, सब लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, अच्छे से, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे सेवा होनी चाहिए, कोई ऐसे मुंह ऐसे करके सेवा नहीं कर रहा था हूँ, जहाँ पूड़ी बना रहे हैं और जो तल भी रहे हैं वह ऐसे ऐसे नहीं था, बिल्कुल ऐसे नहीं था। बड़े उत्साह से सेवा हो रही थी, बड़े अच्छे से सब हंस रहे थे, और नीचे बैठ के माता जी लोग वो गुलाब जामुन को ऐसे गोल गोल कर रहे थे, ऐसे वहाँ पर सब बड़े प्रसन्न थे। तो इसलिए पहली चीज़ कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब हमें ये जानना चाहिए कि हमें सेवा मिली है तो बहुत बड़ा भाग्य है मेरा। छोटी से छोटी सेवा ही क्यों ना हो, मंदिर साफ करने की सेवा, कोई भी सेवा, कोई भक्त जा रहे हैं केवल उनको छोड़ देने की सेवा, इससे भी सुकृति मिलती है। अनजाने में भी अगर आप करें, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, आप जानते भी नहीं कि कोई भक्त है क्या है, एक भक्त ने हाथ दिखा दिया, आपने कहा चलो ठीक है बैठ जाओ, आपने स्टेशन तक छोड़ दिया, बस इतना ही, ये भी बड़े भाग्य की बात। और जब हमें मिले तब तो कितना अच्छा है। तो इसीलिए पहली चीज़ कृतज्ञता, सेवा का भाव होना चाहिए कि हम कृतज्ञ हों वैष्णवों के प्रति, उन भक्तों के प्रति जिन्होंने हमें सेवा दी, क्योंकि हमें ये जो सेवा मिल रही है ये दरअसल भगवान की सेवा है। प्रभुपाद जी जब मंदिर बनाते थे तो बहुत कम भक्त हुआ करते थे, तो प्रभुपाद मंदिर बनाते एक 10-15 दिन रुकते, भक्तों को सिखाते क्या करना है क्या नहीं और चले जाते। अब ये नए लोग, इनको कुछ नहीं मालूम कैसे भगवान की सेवा करनी है। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया, जगन्नाथ जी की स्थापना की, 10-15 दिन रहे, चले गए। जाते समय उन्होंने बोला कि भगवान का रोज भगवान को अभिषेक करना चाहिए, जब भी आपको समय मिले आप अभिषेक कीजिए भगवान का। तो भक्तों ने पूछा, अब वो तो सब बाहर से थे, अभिषेक तो शब्द ही नहीं सुना था, तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद अभिषेक क्या होता है, बेदिंग नहलाना, और क्या कहेंगे, अभिषेक मतलब नहलाना, नो प्रॉब्लम कर लेंगे। तो प्रभुपाद चले गए, जगन्नाथ जी के डीटी थे, तो वो लोग हफ्ते में एक बार अभिषेक करने लगे। तो बड़ी प्रसन्नता से करते थे, कैसे करते थे, जगन्नाथ जी को ऑल्टर से उठाते थे, बाथरूम लेके जाते थे, प्रभुपाद ने कहा ना नहलाना, तो जगन्नाथ जी को ले जाते थे बाथरूम, ब्रह्मचारी बाथरूम में, वहाँ नहलाते थे उनको, फिर वो जो ब्रह्मचारियों का गमछा होता था वो खींचते थे, उससे पोछते थे पूरा अच्छी तरह, और ला के फिर बिठा देते थे, ये उनका अभिषेक था। तो कुछ समय बाद उन्होंने पत्र लिखा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद जैसे आपने कहा हम वैसे भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, तो हम जगन्नाथ जी को बाथरूम में ले जाते हैं, हम उनको नहलाते हैं गमछे से पोछ कर, वापस ला के रखते हैं। आप सोचिए प्रभुपाद को ऐसे पत्र मिल रहा है, जगन्नाथ जी की ये हालत है, तो प्रभुपाद क्या लिखे होंगे प्रभुपाद ने। हम में से कोई होता तो उसी समय फोन करके, अरे क्या कर रहे हो ये हो। लेकिन प्रभुपाद ने पत्र लिखा उन लोगों को कि हाँ आप लोग जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन थोड़ा बढ़ाइए, आप अभी 15 दिन में करते हैं और ज़्यादा कीजिए, हफ्ते में कीजिए, हफ्ते में 2 बार कीजिए, उसको बढ़ाइए। बस प्रभुपाद ने इतना ही लिखा, ये नहीं लिखा कि क्या कर रहे हो तुम लोग, अक्कल नहीं है, अपराधी हो, पाप होगा, ये हो, कुछ नहीं, जो कर रहे हैं ठीक है, थोड़ा बढ़ा दीजिए। और वो लोग क्या करते थे, प्रभुपाद ने जाने के समय कहा कि जो भी है भगवान को अर्पण करना चाहिए, पहले भगवान को ऑफर करो तब स्वीकार करो। तो उस समय वो लोग यंग लोग थे, जीन्स पहनते थे, टी शर्ट पहनते थे, शूज़ पहनते थे, तो सबसे पहले लाके भगवान को अर्पण कर देते जीन्स अर्पण कर दी, टी शर्ट कर दिया, जूते लाए अर्पण किया, प्रभुपाद ने कहा कि सब अर्पण करना। तो ऐसे ऐसे सेवाएं उन्होंने की प्रभुपाद की, लेकिन भाव क्या था। तो प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा एक बार भक्तों को कि मंदिर में आप जो सेवा कर रहे हो, चाहे डीटी वर्शिप हो, मंदिर साफ करना हो या जो भी हो, दरअसल ये मेरी सेवा है, मुझे करनी चाहिए कृष्ण के प्रति, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कहाँ कहाँ करूँगा, इसीलिए आप मेरी तरफ से वो सेवा कर रहे हैं। तो ये हमारा भाव होना चाहिए कि दरअसल ये सेवा हमारी नहीं है, ये प्रभुपाद की है, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद नहीं कर पा रहे, हमें अवसर मिला है वो करने का। जो सेवा प्रभुपाद को करनी चाहिए वो सेवा का अवसर हमें मिल रहा है, कितने बड़े भाग्य की बात है। कृतज्ञता, धन्यवाद देना चाहिए। तो ये एक सेवा का भाव हमारा होना चाहिए, तो पहला कि हम कृतज्ञ रहें, दूसरा हमें सेवा को अपने प्राण मानकर करना चाहिए, 100% जितना हम उसको अच्छी तरह कर सके उसे करना चाहिए। ये नहीं कि हम अच्छा कर सकते हैं लेकिन हम करें नहीं, ये एक अपराध है। सेवा अपराधों में भी एक अपराध होता है जो ड्यूटी के प्रति किया जाता है, कि जैसे फेस्टिवल हैं और उत्सवों में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जैसे अच्छा सजा सकते हो, अच्छा कुछ और कर सकते हो, लेकिन आप करो नहीं, ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही करेंगे, ये एक अपराध माना गया। आप कर सकते हो, हाँ नहीं कर सकते बात अलग है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत फूलों से सजाना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं है फूल खरीदने के लिए, ठीक है जितने मिले उतने करो, वो ठीक है। लेकिन आपके पास सुविधा है मगर आप ऐसे ही कि नहीं अरे कौन इतनी मेहनत करे, ये सब लाओ सुबह सुबह सब, ये अपराध है। तो इसीलिए 100% जितनी क्षमता हो पूर्ण क्षमता से हमें हमारी सेवा करनी चाहिए। फिर कोई भी सेवा क्यों ना दी गई, चाहे झाड़ू मारने की सेवा दी गई हो उसको भी बड़े अच्छे से करना चाहिए। ये नहीं कि चलो वैसे भी साफ ही दिख रहा है क्या करना है। एक बार जब हमने ज्वाइन किया था आश्रम, बहुत नए थे तब, तो बहुत बस आए थे, हमें कुछ नहीं पता था। तो अचानक हमारे मंदिर में हम लोग को समाचार मिला कि एक बहुत बड़े सन्यासी आ रहे हैं अपने एक 3-4 शिष्यों के साथ। तो हमारे मंदिर में उस समय भी व्यवस्था नहीं थी रहने की, बम्बई की बात है ज़्यादा, तो पास में एक फ्लैट था। तो जो हमारे मंदिर के कमांडर थे उसने हमसे कहा कि एक काम कीजिए, आप जाइए और वो रूम क्लीन करिए, सन्यासी आने वाले हैं तो रूम क्लीन रखिए। हमने कभी किया ही नहीं, हमें नहीं पता कि क्या सन्यासियों के लिए क्या करना होता है। अरे कोई चिंता नहीं, वो वैसे भी साफ़ है, देख लीजिए, और बाथरूम देख लीजिएगा, अगर कुछ मिट्टी विट्टी हो तो ऐसे पाँव से उसको साफ़ कर दीजिए, पानी डाल के पाँव से साफ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्योंकि उन्होंने इस तरह से कहा, बहुत गंभीरता से नहीं कहा कि अरे सन्यासी यार एकदम स्पॉटलेस क्लीन होना चाहिए, तो हमने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हम गए ऐसे पानी वानी डाला, थोड़ी मिट्टी थी साफ के गंदा वैसे छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया। वो आए करीब रात को तो उनको चाबी दे दी, वो चले गए। अब वहाँ गए तो ना उनको ओढ़ने के लिए चादर है ना कुछ है, कुछ हमें पता ही नहीं था, हमने कुछ किया ही नहीं व्यवस्था। और ये सब होने के बाद रात को उन्होंने अपने 2-3 शिष्यों को नीचे भेजा आश्रम में, जाओ कुछ तो लेकर आओ, ओढ़ने के लिए नहीं है कुछ नहीं। तो वो बेचारे आकर ढूंढ रहे हैं और सब सो गए, 9:30 बजे सो जाते हैं, 10-11 बजे आकर ढूंढ रहे हैं सब। तो ये सब बात कुछ भक्तों को दूसरों को पता चली तो अगले दिन बहुत हंगामा हो गया, अरे सन्यासी आए किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये है कि हमें ध्यान पूर्वक सेवा करनी चाहिए, पूरा 100% मंदिर अगर रूम साफ़ करने की सेवा दी गई अच्छी तरह, ऐसे नहीं कि बस चलो थोड़ा सा पाँव लगा दिया हो गया, नहीं अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो पहला भाव क्या है, कृतज्ञता होनी चाहिए। दूसरा पूर्ण क्षमता से अपने प्राण मानकर कि बस यही मेरे लिए, यही मुझे गोलोक लेके जाएगी, इस भाव में हमें करना चाहिए। और तीसरा अहंकार से रहित, हमारी सेवा में हमें अहंकार नहीं आना चाहिए कि देखो मैं कितनी अच्छी सेवा करता हूँ, दूसरा वो नहीं कर पाता, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने मंदिर अच्छा साफ किया, मैं अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छा ये करता हूँ, मैंने अच्छी ड्यूटी ड्रेसिंग की है, तो ये भी नहीं। तो अहंकार से रहित, क्योंकि अगर अहंकार से आप सेवा करते हो तो आप कृष्ण की नहीं अपने अहंकार की सेवा कर रहे हो, अपने अहंकार को बढ़ा रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो। तो इसीलिए अहंकार नहीं आना चाहिए। तो हमारी सेवा में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, पूर्ण क्षमता होनी चाहिए जितनी हमारी क्षमता है, अहंकार नहीं होना चाहिए, और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करनी चाहिए, और किसी रूप के लिए नहीं, और किसी कार्य के लिए नहीं। ठीक है? यस प्रभु जी, प्रश्न हमने समझाने, गोलोक धाम में जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, हाँ झाड़ू में जीव होता है कि नहीं? यस, वो सब जीव हैं, पत्थर भी जीव है वहां के। आध्यात्मिक जगत चिन्मय धाम है, वहां के पत्थर, वहां की धूल, वो सब जीव हैं, और वो सब भी सेवा करते हैं। हाँ, उनकी सेवा है कि भगवान के चरणों में लग जाते हैं, फिर यशोदा मैया उनको साफ करती है धूल को। जैसे दूध, जब दामोदर लीला का वर्णन किया जाता है तो दामोदर लीला में क्या हुआ था, यशोदा मैया दूध पिला रही हैं कृष्ण को, अचानक उन्होंने देखा कि चूल्हे पर रखा हुआ है दूध, वो बाहर आ रहा है। तो उसका वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि दरअसल दूध भी वहाँ जीव है आध्यात्मिक जगत में। तो दूध ने सोचा कि अगर सारा दूध कृष्ण माँ से पी लेंगे तो हमारा क्या होगा, और अगर हमें नहीं पिएंगे तो इससे अच्छा तो मर जाना है। इसीलिए वो अपने जान दे रहे थे, आत्महत्या कि इससे अच्छा मैं गिर के मर जाऊं। तो ये भी भाव वहाँ का, तो सब जीव हैं। यस, पीछे लास्ट में, हाँ, घर में छोटे, हाँ हाँ, जगन्नाथ जी के डीटीज का अभिषेक डायरेक्ट नहीं किया जाता है, साल में एक ही बार स्नान यात्रा के दिन करते हैं। पानी उनका उनका जो अभिषेक है वो या तो मन से किया जाता है मानसिक, या फिर शीशे में दिखाकर किया जाता है दर्पण से, जैसे जगन्नाथपुरी में करते हैं। जगन्नाथपुरी में जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो इतना बड़ा शीशा रखते हैं सामने जगन्नाथ जी होते, वहाँ अभिषेक करते हैं। या फिर जैसे हम लोग मंदिर में करते हैं, मन से अभिषेक करते हैं, अर्थात हम उनको मंत्र के द्वारा बिठाते हैं अभिषेक के वेदी पर और फिर अभिषेक करते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन डायरेक्ट उनका नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लकड़ी के हैं, इसीलिए वो साल में एक बार जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा के दिन सीधे अभिषेक हो सकता, बाकी दिन नहीं करना चाहिए। हाँ, यस यस यस, ज़्यादा तो पानी से होता है, अलग अलग नदियों का जल लाया जाता है। हम लोगों ने किया था एक बार मंदिर में, हमने बहुत सारे जल मंगाए थे, गंगा का, यमुना का। इस बार भी स्नान यात्रा जून में है, यहाँ करेंगे मंदिर में, कारवार में, तो पवित्र नदियों का जल लाएंगे सब बाहर से, गंगा, यमुना, सरस्वती, पता नहीं मिले कि नहीं मिले, कावेरी और जो भी है, कृष्णा, बहुत सारे रिवर हैं, तो अलग अलग रिवर्स का जल ला के अभिषेक करेंगे। आपका कोई प्रश्न था, मन और आत्मा में अंतर क्या है? इस जगत में जब हम रहते हैं तो हमारे दो शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जिसको आप देख सकते हैं, ये जो भी आप देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर जो अंदर होता है सूक्ष्म छोटा, उसको देखा नहीं जाता। दोनों भगवान की शक्ति से बनते हैं। तो ये जो शरीर है ये पंच महाभूत से बना है, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, इनसे बना है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो तीन सूक्ष्म चीज़ों से बना है, और वो हैं मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, भौतिक तत्व है, आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन आत्मा न स्थूल शरीर का हिस्सा है न सूक्ष्म शरीर का, वो इनके परे है, वो भौतिक तत्व नहीं है, वो आध्यात्मिक तत्व है। तो मन और आत्मा में ये अंतर है कि मन भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। आत्मा की उपस्थिति के कारण मन कार्य करता है, मन की उपस्थिति के कारण आत्मा कार्य नहीं करती। ठीक है, और किसी का? यस प्रभु जी, ध्रुव महाराज जो भक्त बने, क्या वो कर्म से बने या भगवान की इच्छा से? ध्रुव महाराज भक्त बने भगवान की कृपा से। उनकी इच्छा भक्ति करने की नहीं थी, कर्म के अनुसार तो केवल वो कुछ राज्य को प्राप्त कर लेते, लेकिन क्योंकि वैष्णवों की कृपा हो गई, नारद मुनि जैसे भक्त के दर्शन हुए और उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए वो भक्त बने। तो भक्ति कर्मों से नहीं आती है, इस चीज़ को जानिए। आपका धन, आपका ऐश्वर्य, आपकी मान प्रतिष्ठा, आपका प्रधानमंत्री बनना, ये सब कर्मों से है। इस भौतिक जगत की जो चीज़ें वो कर्मों से हैं, भक्ति कर्मों से नहीं आती है, क्योंकि भक्ति भौतिक नहीं है। कर्मों से केवल भौतिक चीज़ें मिलेंगी। तो भक्ति किससे आती है? भक्ति सुकृति से आती है। तीन प्रकार की सुकृतियाँ होती हैं, भोगोन्मुखी सुकृति, मोक्षोन्मुखी सुकृति, भक्त्योन्मुखी सुकृति। सुकृति मतलब अच्छे कार्य। तो कुछ अच्छे कार्य जो आपको भोग प्रदान करते हैं, कुछ अच्छे कार्य जो आपको मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे कार्य जो भक्ति प्रदान करते हैं। तो जब कई जन्मों तक भक्त सुकृति करता है, सुकृति मतलब जैसे हमने उदाहरण दिया किसी भक्त की मदद कर देना अनजाने में, अज्ञात सुकृति कहते हैं उसको, या जानते हुए तो सुकृति हुई। तो जब बहुत सुकृति उसकी जमा हो जाती है तब वो भक्तों के संग में आता है, भक्ति का अवसर मिलता है। लेकिन तब भी भक्ति करे या ना करे ये उसके कर्म पर आधारित नहीं है, ये उसकी इच्छा पर आधारित है। तो इसीलिए ध्रुव महाराज को जो मिला वो उनकी इच्छा पर आधारित था, कर्म पर नहीं। ध्रुव महाराज का, ध्रुव महाराज की क्या सुकृति थी? पूर्व जन्म में कई सुकृतियाँ की होंगी उन्होंने, उसका इतना हमें इतिहास भी पता नहीं है ध्रुव महाराज का। लेकिन इस जन्म की सुकृति हम देख सकते हैं कि उन्होंने नारद मुनि का संग किया। प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्ति करने के लिए अगर भक्त का संग मिल जाए तो हमारे सारे पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं और तुरंत भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो भले अगर उनका पूर्व जन्म में कोई भी भक्ति ना रही हो, कोई सुकृति ना भी रही हो, सुकृति करके भक्ति करना ये एक नियम है, लेकिन कृपा पात्र, भक्त की कृपा मिलकर भक्ति करना, उसके लिए कोई नियम नहीं है। क्योंकि कृपा का अर्थ ही होता है वो चीज़ जो बिना नियम के आए। नियम से जो आता है उसको न्याय कहते हैं, और जो बिना नियम के आए वो कृपा है। जैसे उदाहरण के लिए हमें कई बार उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ने हत्या की तो हत्या करके उसको जो नियम से मिलेगा वो मिलेगी फांसी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट उसको छोड़ देता है वो उसको कृपा कहा जाता है। यहाँ पे भी उसको मर्सी पिटीशन कहते हैं, कृपा की याचना। तो कृपा मतलब कोई नियम नहीं, उसमें कोई पूछा नहीं जाता किस आधार पर कृपा आ रही है। कृपा का कोई आधार नहीं है, न्याय का आधार है। न्याय करना है तो नियम आधार है। जैसे उसको फांसी की सजा देनी है तो उसका क्या आधार है? कानून आधार है, संविधान आधार है। लेकिन अगर कृपा दी है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया छोड़ दो, उसका क्या आधार है? कोई आधार नहीं है, ना वो प्रेसिडेंट से उसका रिलेटिव है, ना उसने कुछ प्रेसिडेंट को घूस खिलाई है, कुछ नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है, प्रेसिडेंट जानते भी नहीं है कौन है, बस कृपा। तो कृपा का कोई आधार नहीं हो। ये इसीलिए चैतन्य चरितमृत में कहा है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड में घूमते रहते अलग अलग योनियों में, उसमें से कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो ये भाग्य से आता है, इसीलिए इसको बहुत संभाल कर रखना चाहिए। तो अज्ञात सुकृति भी हो सकती है, कुछ कारण होते हैं। कोई अज्ञात सुकृति होती है जब आपने अपने पूर्व जन्म में कई तपस्याएँ कर ली हैं, योग साधना कर ली है, अब आप तैयार हो गए सुकृति के लिए, तो उसका तो है, लेकिन मूल कारण कुछ नहीं है, भाग्य। लेकिन हाँ ये भी है कि जो व्यक्ति सुकृति करता है तो निश्चित पूर्व जन्मों में योग अभ्यास कर चुका है, यज्ञ कर चुका है, तपस्याएं कर चुका है, कर्मकांड कर चुका है, तो अब वो भगवान की ओर जा रहा है, तो ये तो निश्चित है। यस प्रभु। प्रहलाद महाराज का पूर्व जन्म क्या है? एक ब्राह्मण थे ऐसा कहा गया है, नरसिंह पुराण में ये कथा आती है कि प्रहलाद महाराज एक ब्राह्मण थे, एक वेश्या से बहुत आसक्त थे, ब्राह्मण होते हुए एक दिन रात्रि के समय उनका कुछ झगड़ा हो गया और वो चले गए। उन्होंने कुछ खाया नहीं, दिन भर नहीं खाया, एक मंदिर में बैठे रहे। खंडर था, मंदिर भी नहीं, खंडर समझते, टूटी फूटी जगह, वहाँ जाके बैठे रहे, रात भर बैठे रहे, न सोए न कुछ खाया न पिया। और वो था नरसिंह जयंती का दिन, तो अनजाने में उन्होंने उपवास भी किया, जागरण भी किया। और वो जो मंदिर जहाँ बैठे थे खंडर, वो नरसिंह देव का मंदिर था पुराना, तो वहाँ पर उन्होंने किया, तो इसके कारण फिर अगले जन्म में उनको प्रहलाद का रूप, ऐसा पुराण में। हाँ, नरसिंह देव तो शाश्वत हैं, कई बार आते हैं कई बार जाते हैं, तो यस यस बहुत बार। भगवान के सारे अवतार शाश्वत हैं, कई बार आ चुके हैं। कृष्ण अभी आए, लेकिन ऐसा वर्णन है कि परशुराम जी ने जब रामचंद्र जी से मिले तो कृष्ण का नाम लिया। अगर कृष्ण तब नहीं आए थे तो उनका नाम कैसे लेते, तो इसीलिए शाश्वत है। उस पर हम कोई टीका नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र का आधार नहीं है। हम लोग अवतार उनको मानते हैं जो शास्त्र के आधार पर हैं। जैसे प्रहलाद महाराज चैतन्य लीला में मुरारी गुप्त बनकर आए, नहीं मुरारी गुप्त हनुमान जी थे शायद, वासुदेव दत्त बनकर आए, वासुदेव दत्त। तो ये शास्त्र प्रमाण है, हम मानते हैं शास्त्रों में वर्णन। लेकिन बाकी अन्य चीज़ें कौन किसके बने नहीं बने, अगर शास्त्र में कहीं लिखा है तो हम स्वीकार कर लेंगे, या फिर कोई बहुत बड़े आचार्य ने प्रमाणित किया है तो हम स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। तो इसलिए उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं या नहीं है। अगर शास्त्र में है, कोई आचार्य ने कहा है, तो हम स्वीकार करेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसमें उपासना और भक्ति में क्या अंतर है? थोड़ा अंतर है। उपासना कांड में कई तरीके दिए गए हैं, दो प्रकार के भक्ति के अंग हैं, जिसमें से एक उपासना है। उपासना मतलब जब हम विधि के द्वारा कुछ प्रक्रिया करते हैं, जैसे हम लोग डीटी वर्शिप करते हैं, ये उपासना है। तो उसमें ये करना है, इस मंत्र का उच्चारण करना है, ये मुद्रा करनी है, ये सब है। भगवान को भोग लगाने के लिए बहुत सारे नियम हैं, डायरेक्ट ऐसे भोग नहीं लगाते हैं। हम लोग को तो ज़्यादा जब पता नहीं होता तो हम लोग रखते हैं सामने, भगवान खा लेना, हो गया, ऐसा नहीं है। पहले शुद्धिकरण है, फिर उस भोग को शुद्ध करना होता है, उसके बाद मंत्र बोलने होते हैं, उसके बाद मुद्राएँ करनी होती हैं, उसके ऊपर ऐसे रख के मुद्राएँ होती हैं, तो वो सब होने के बाद भोग लगता है। तो ये सारी उपासना कांड का भाग है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग पंचरात्रक विधि, तो जिस उपासना कांड में आता है। लेकिन भक्ति में और एक विधि है, जो है भागवत विधि, जिसमें कोई नियम नहीं, ऐसे कोई खास नियम नहीं है कि आपको इतना इतना करोगे तभी होगा। जैसे माधवेंद्रपुरी, वो उन्होंने संध्या करना भी छोड़ दिया, गायत्री नहीं करते, संध्या को नमस्तुभ्यम नमस्कार है। अफकोर्स उनका स्तर उतना ऊंचा है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम भी 20 साल हो गए, अब संध्या भी त्याग दें, सब त्याग दें, नहीं। तो एक है कि वो भागवत विधि है, जहाँ केवल कृष्ण से स्वतः प्रेम होता है, तुरंत प्रकट होता है प्रेम, स्पॉन्टेनियस लव, तो वो भागवत विधि है। तो इसीलिए उपासना और भक्ति में ये अंतर है कि उपासना ही केवल भक्ति नहीं है, उपासना भक्ति का अंग है, लेकिन भक्ति में और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, किसका? देवी के उपासक। हाँ हाँ, तो वो लोग उपासना करते हैं, वही बताया कि वो विधि से उनकी पूजा इत्यादि करते हैं, तो पूजा करते हैं केवल। तो इसीलिए उपासना कांड में थोड़ा बहुत ये चर्चा होती देवी, जैसे ज्यादातर तो कर्म कांड में है, तो एक्चुअली उनको उपासक या भक्त नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कहा जाता है तो ठीक। हरे कृष्ण। ऐसा है कि शास्त्र में लिखा है कि कोई भी भक्ति करे, कितनी भी क्यों ना करे, उसका नाश नहीं होता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम, अगर थोड़ी भी भक्ति की है, मान लीजिए खाली मंदिर में आके दंडवत किया जीवन में एक बार, बाकी छोड़ दीजिए, तो भी उसको लाभ मिलता है, वो नाश नहीं होता। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन है, भगवद गीता में ही वर्णन है, छठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जिसकी भक्ति पूरी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत की उसने लेकिन पूरी नहीं हुई है, तो उसको अगला जन्म शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जिसका योग पूरा नहीं हुआ, जिसने भक्ति पूरी नहीं की, थोड़ी की, अच्छी की, तो फिर उसको अगला जन्म किसी अच्छे कुल में जन्म मिलता है, किसी अच्छे धनवान परिवार में मिलता है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, गेहे मतलब घर में, जहाँ उसको भक्ति की और आगे की सुविधा मिलती है, ताकि उसको बाकी, जैसे कभी कोई बहुत गरीब परिवार में जन्म हो तो उसको जीवन भर केवल पेट भरने की चिंता रहे तो भक्ति कैसे कर पाएगा। लेकिन समझिए उसने उस जन्म में रहते हुए बहुत अच्छी भक्ति कर ली, पूरी नहीं कर पाया, तो फिर अगला जन्म उसको बड़े अच्छे परिवार में मिलता है, कुलीन परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, धनवान परिवार में, ताकि उसको वो सब चिंता ना हो, वो पूरा ध्यान भक्ति पे लगा सके। तो श्री शुचि नाम श्रीमताम गेहे। हाँ, कभी कभी जैसे कोई गलत काम कर बैठते हैं, भक्ति भी करते हैं, तो उसका दंड स्वरूप भी उन्हें थोड़ा बहुत जन्म, जैसे प्रभुपाद समझाते थे कि वृंदावन के जो बंदर हैं तो बड़े भाग्यवान है। एक्चुअली हम लोग वृंदावन के बंदरों की आराधना करते हैं। आप जाएंगे अगर वृंदावन में तो देखिए, लोग ट्रक में भर भर कर केले लेकर आते हैं, सारे परिक्रमा मार्ग में घूमते बंदरों को खिलाते रहते हैं, और कहीं नहीं करते, वृंदावन में करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वृंदावन के बंदर हैं, वृंदावन के प्राणी हैं, वो एक्चुअली भक्ति के बहुत ऊँचे स्तर पर हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत गलती कर दी पिछले जन्म में, तो उसके शुद्धिकरण के लिए उनको वृंदावन में जन्म दे दिया जाता है एक बंदर के रूप में। लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है वृंदावन में, तो आप सोच लीजिए वृंदावन में जो देह छोड़ता है उसको क्या स्थिति होती होगी। भले वो बंदर है लेकिन है वृंदावन का। तो क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में भक्ति करते हुए थोड़ी बहुत कुछ अपराध कर दिए, कोई गलतियां कर दी, तो उस अपराध को शुद्ध करने के लिए ये दिया जाता। तो जिस भक्त का जन्म हुआ, उसने भक्ति की, अच्छी सेवा की, लेकिन फिर कुछ कारणों से कुछ गलत कार्य कर बैठा और उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हुई, तो ये तो निश्चित है कि अब आगे भगवान जहाँ तक उसने भक्ति की उसके आगे उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि भक्ति का नाश नहीं होता। जैसे हमने इस जन्म में 20% ही भक्ति की, 100 करना था 20 की, तो अगले जन्म में फिर से जीरो से शुरू नहीं होना है। अब हमारी 20 बनी हुई, हम 21 से शुरू करते हैं, तो आप सोचिए ऑलरेडी 20% किया हुआ भक्ति, वो जन्म लेते ही वो बहुत अच्छा जन्म लेगा और भक्ति अच्छी करेगा, लेकिन जिसने जीरो की है उसको बड़ा कष्ट होगा भक्ति करने के लिए। इसीलिए हम लोग कभी कभी देखते हैं कोई बालक जन्म लेता है और बचपन से ही बहुत अच्छी भक्ति करता है, उसके माता पिता भक्त नहीं है, बालक भक्त बन जाता है, तो कैसे आश्चर्य, ये कैसे हुआ, पूर्व जन्म की भक्ति है। अभी हम दिल्ली में थे, हमने एक प्रवचन दिया, उसके बाद एक माता जी आकर हमसे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि उनकी एक छोटी बच्ची है, 3 या 4 साल 5 साल कैसे कोई छोटी बच्ची है, तो वो बोलते कि वो जब कहो उसको कुछ भी कहो तो बोलती कृष्ण का नाम लो, वो बच्ची बोलती, उन लोगों को सिखा रही है कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। तो जब उन्होंने कहा तो हमने कहा उसको हमारा दंडवत कहिएगा। छोटी सी बच्ची अगर ये कह रही है तो पिछले जन्म में क्या उसने किया होगा भक्ति, जो आज वो अपने माँ बाप को सिखा रही है कृष्ण का नाम लो, तो बड़ी प्रचारक रही होगी, हमने हमारा दंडवत उसको कहिएगा। तो ये चीज़ है, जिसने पीछे की है वो आगे से शुरू करता है। हम सबके जीवन में हम देख सकते हैं, हम लोग जन्म लेते हैं, शुरू करते हैं 15-20 साल 25 साल, पता भी नहीं भक्ति क्या है, कोई नहीं जा, अचानक भक्ति शुरू हो जाती है, कोई भक्त से संपर्क होता है, अचानक शुरू हो गई और फिर वो एकदम स्पीड में, तो पीछे का हमने किया हुआ है 20%, 30%, 40%, अब आगे उसको बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो भी भक्ति हमने की या जिसने भी की, तो 20% की हो, 10% की हो, 50% की हो, जितनी करनी है, अब उसके आगे ही होगा, पीछे नहीं जाएगा, ये विश्वास। तो अच्छे घर में अच्छे कुल में जहाँ उसको भक्ति की सुविधा होगी वो करेगा। हाँ, केवल जो अपराध कर दिए उसके स्वरूप उसको भक्ति में उस समय थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं, जैसे भक्ति का अवसर मिलेगा लेकिन इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर भक्तों का अच्छा संग मिला, जैसे आप हम सबको देखिए, हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं, क्या हमारी योग्यता है? कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी बस भक्तों का संग है इसलिए थोड़ी बहुत धक्का लग रहा है, भक्ति चल रही है। तो ऐसे ही उनको भी जहाँ भी होंगे उनको निश्चित भक्ति का अवसर प्राप्त होगा। पीछे, हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिए। हमें पता है आप लोगों ने प्रसाद नहीं लिया है, लेकिन थोड़ा जोर से। किसने किया वो कर्म? बुजुर्गों ने। हाँ हाँ, माता पिता का कर्म तो निश्चित लगता है बच्चे को। माता पिता जो करते हैं उस कर्म को बच्चे को सहन करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। बच्चा अपने कर्म भी लेकर आता है, तो उसके कर्म हैं प्लस माता पिता के कर्मों का असर, तो वो तो बच्चे को भोगना पड़ता है। क्योंकि बच्चा जन्म ही लेता है माता पिता के यहाँ उनके कर्मों के अनुसार। जैसे मान लीजिए आप किसी से कर्जा लेते हो इस जन्म में और किसी तरह चुकाए बिना आप चले जाते हो और वह आदमी बोलता है इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, तो वह आदमी जिससे आपने कर्ज लिया अगले जन्म में आपके बच्चे के रूप में जन्म लेगा और बीमार रहेगा जीवन भर, और आप सारा जितना कमाओगे उसके ऊपर खर्चा करते रहोगे, और फिर आप प्रश्न करोगे भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो फिर कोई भक्त आके बताएगा पिछली बार कर्जा लिया था चुकाया नहीं, इस बार मत करना ऐसा। तो इसीलिए कर्मों का फल लगता है, माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। अगर माता पिता कोई पाप करते हैं तो निश्चित बच्चों को भी, क्योंकि वो उन्हीं की संरक्षण में हैं, उन्हीं के अधीन हैं, तो उनको भी भुगतना पड़ता है। लेकिन बच्चा अपने भी कर्म लेकर आता है, उसके कर्म अलग हैं, तो उसको जैसे समझ लीजिए माता पिता बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं देते, राइट? माता पिता सब शराबी हैं, मांस खाते हैं, बच्चे को भी प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि पाश्चात्य जगत में पिता शराब पीते हैं, बच्चे को सोडा पिलाते साथ में बिठाकर आदत डालने के लिए। तो ऐसे संस्कार अगर होंगे तो निश्चित है कि प्रभाव पड़ रहा है ना बच्चे के ऊपर कर्मों का। लेकिन अगर कहीं भक्त का संपर्क हो जाता है, जैसे उन लोगों को भी जो बचपन से शराब पीना मांस खाना ये उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है। पाश्चात्य जगत में ऐसा नहीं है कि उनको समझाया जाता है, जैसे यहाँ भारत में अगर कोई बच्चा शराब पीना चाहता है तो छुपके पीता है, कहीं पर गाड़ी लेके 50 किलोमीटर दूर जाता है, पी के आता है, फिर कुछ चॉकलेट वॉकलेट खाता है, कुछ खाता है ताकि बदबू नहीं आए, और आके बैठ जाता है पिता के साथ खाने के लिए। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे पीना है तो सामने बैठता है पिता के, पिता को बोलता है जरा थोड़ा ये छोटा है थोड़ा बड़ा डालो पीने के लिए, ऐसा। तो यहाँ भी हो गया, अरे अरे ऐसे ही करते हैं। या लोग अपने आप को मॉडर्न मानते हैं, एडवांस, थोड़ा ले लो। हाँ तो आपने पिया कि नहीं पिया? हमें भी एक बार किसी ने दिया था, ऑफकोर्स ये कपड़ा पहनने के पहले, हम बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो बम्बई में वहाँ पर क्रिश्चियंस बहुत हैं और क्रिश्चियंस अपने आप को वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न मानते हैं। तो एक बार हमारे जो बड़े भाई थे वो कहीं पढ़ा करते थे, तो उनका फ़ोन आया कि मेरा एक फ्रेंड है उसको तुम ये चीज़ें जाके दे दो, वो कल आ रहा है तो लेकर आ जाएगा, हॉस्टल में रहते थे। ठीक है, हम छोटे थे तो हम वो चीज़ें लेकर उसके घर पर गए, तो बॉक्स था इतना बड़ा, तो बॉक्स पे पूरा लेके गए उसके घर में। हमें नहीं पता था उस दिन उसका जन्मदिन था उस लड़के का, और उसके घर में उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था, और हम जब वो बॉक्स लेकर आए तो सबने सोचा ये बर्थडे मनाने के लिए आया है। हमें पता ही नहीं था कि उसका बर्थडे, हम तो वो देने के लिए आए थे। तो जैसे ही आए वो लड़का नहीं था, हमने पूछा नाम, तो उसके पिताजी थे वहाँ, बोले हाँ हाँ आओ आओ बैठो बैठो। हमने कहा कितने अच्छे पिताजी हैं, अभी खाली नाम पूछा इतनी अच्छी तरह बिठा रहे हैं, तो बोले बैठो बैठो। और फिर वो अंदर गए और एक बियर का ग्लास लेकर आए, हम शायद 7th या 8th में पढ़ते होंगे उस समय, इतने छोटे बच्चे को इतना तो होना चाहिए, तो एक बियर का ग्लास लेकर आए, हमारे हाथ में दिया, हमारे तो पूरा शरीर कांप गया, कभी किसी ने ऐसा किया नहीं था। हमारे पिताजी तो इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो नाम नहीं लेते थे घर में, तो ये तो हम एकदम हिल गए क्या, और हमें कुछ पता नहीं, छोटा ज्यादा बड़े नहीं थे कि उनको कहें कि शर्म नहीं आती ऐसे, आज कोई करे तो दो थप्पड़ भी मार दे, शर्म नहीं, आज कोई करेगा भी नहीं, अलग बात है। तो हमें कुछ समझ नहीं आया क्या करें, ले कि ना ले, और वो कह रहे ले लो, टेक इट, नो प्रॉब्लम, टेक इट। हम एकदम दुविधा में क्या करना है क्या नहीं, तब तक वो लड़का आ गया, और वो जानता था कि हम उसके फ्रेंड के भाई हैं। तो जैसे उसने देखा, उसने पिताजी को ए हटाओ हटाओ हटाओ, तो फिर उसने कहा, वो लेके गए अंदर, उसने कहा ठीक है ले लो कर लो। तो हमें ये इतना आश्चर्य हुआ कि छोटे बच्चे को आप पूछ भी नहीं रहे हो कि वो क्या है, कौन है, क्यों आया है, और इतना छोटा है उसको कुछ पता नहीं, आप जाके बियर का ग्लास दे रहे हो उसको, ये सोच के कि हम बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें ठीक नहीं। तो पाश्चात्य जगत में तो होता ही था, प्रभु जी बता रहे, भारत में भी अभी बहुत जल्दी शुरू हो गया है कि पिता और पुत्र एक साथ बैठ कर पीते हैं। तो ऐसे संस्कारों से क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? निश्चित प्रभाव पड़ेगा, बच्चा बिगड़ेगा। लेकिन अगर भक्त की कृपा हो, जैसे प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए तो उन्हीं लोगों को उन्होंने भक्त भी बनाया। तो लेकिन ये भाग्य की बात है कि अगर ऐसा हो जाए, अन्यथा माँ बाप को बड़ा संभालना चाहिए बच्चों की परवरिश में। और कोई प्रश्न है इस राजवीर? हाँ जी, निश्चित जाना ही है। आते दोनों, ये टू वे है, लोग ऊपर जाते रहते हैं, नीचे भी आते रहते हैं। नहीं तो ऐसा होता तो खाली ऊपर जाते तो पृथ्वी खाली होने लगती है ना। नहीं, दोनों हैं। और दूसरा ये भी है कि पृथ्वी खाली क्यों नहीं हो सकती, करोड़ों करोड़ों जीव हैं। अभी इस कमरे में कितने जीव हैं आप बताइए, कितने जीव हैं? हाँ जी, बहुत रहेंगे, हमको दिखते नहीं, सही है। इस समय यहाँ पर लाखों जीव हैं इस कमरे में, केवल आपके हमारे बीच में हजारों जीव हैं, है ना। उनको माइक्रोस्कोप लेके आप देख लो तो दिख जाते हैं। तो इसीलिए इतने जीव हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते मनुष्य बनते रहते हैं, नीचे से भी आते रहते हैं। तो नीचे की योनियों से आते रहते मनुष्य बनते हैं, कुछ थोड़े ऊपर से आते रहते हैं, ये सब स्वर्ग वगैरह से तो गिरते ही रहते हैं। स्वर्ग से कोई ऊपर जाता नहीं है ना, स्वर्ग में तो क्या है, बड़ा आनंद है, तो बस वहाँ आनंद लेते हैं, अचानक पैसा ख़त्म हो जाता है, धक्का मार दिया जाता है, फिर नीचे आ जाता है। और आध्यात्मिक जगत में भी चलता रहता है, ऊपर नीचे चल रहा है। और किसी का कोई प्रश्न? यस, गायत्री ये एक छंद है। गायत्री मतलब गाने का तरीका, कहने का तरीका। तो उसमें उतने शब्द होते हैं, हर एक जो श्लोक होता है ये अलग अलग छंदों में होता है। जैसे भगवद गीता में दो प्रकार के छंद हैं, जैसे एक श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम् अकुर्वत संजय, ये एक छंद है क्योंकि उसमें उतने ही शब्द हैं। फिर दूसरा छंद है जो दूसरे अध्याय में देखते हैं हम लोग, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, इसमें ज्यादा शब्द हैं तो इसका छंद अलग है। तो गायत्री एक छंद है, छंद मतलब गायत्री एक देवी भी है, लेकिन ये गायत्री एक छंद है जिसमें इतने ही शब्द होते हैं, इसीलिए वो शब्द कहे गए हैं, और उसको गाने का, उसको कहने का एक तरीका होता है, तो उसको गायत्री कहते हैं। और गायत्री एक नहीं है, जैसे एक बड़ी प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ना, जो लोग हम लोग कभी कभी किसी को मोबाइल फ़ोन करते हैं तो चालू हो जाता है ओम वगैरह, और या फिर कहीं पे भी लगा रहता है, वो केवल एक प्रकार की गायत्री मंत्र है। ऐसे बहुत गायत्री मंत्र है, हर हर भगवान के हर अवतार के गायत्री मंत्र हैं, तो उसको अलग अलग, तो गायत्री मतलब छंद, तो उस छंद में इतने होते हैं इसलिए उसको गायत्री कहा जाता है। जैसे अलग अलग छंदों के नाम हैं, तो गायत्री एक छंद है केवल। ठीक है, और कोई प्रश्न? यस, एक मिनट पीछे। हाँ, तीनों हाँ इसलिए किया जाता है सरस्वती इत्यादि का स्मरण, क्योंकि वे इस जगत में, भौतिक जगत में, वो एक देवी हैं। जो वो आप कह रहे हैं वो छंद नहीं है, वो देवी के रूप में स्मरण होता है। तो देवी देवताओं का स्मरण अलग अलग कार्यों से, जैसे सरस्वती का स्मरण विद्या के लिए किया जाता है, तो इसलिए उनका स्मरण, तो वो जब स्मरण होता है वो देवी के रूप में। तो गायत्री एक देवी भी हैं और गायत्री एक छंद को भी कहते हैं। तो इनका प्रश्न छंद के लिए था, जो 33 शब्द होते। हाँ जी, गायत्री, हाँ बहुत सारे गायत्री बहुत है, सूर्य के लिए है, अन्य देवताओं के लिए है, कामदेव के लिए है, इसको काम गायत्री कहते हैं, ऐसे बहुत सारी देवते। यस, गायत्री मंत्र जोर से नहीं बोलते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं। दरअसल गायत्री मंत्र जो होते हैं वो योग्य व्यक्ति को दिए जाते हैं, गुरु के द्वारा दिए जाते हैं, कान में दिए जाते हैं, वो पब्लिकली नहीं बोलने चाहिए। इतना ही नहीं, जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपके होंठ भी नहीं हिलने चाहिए, तो आपको मन में करना होता है वो जाप। तो इसीलिए माइक पर बोलना, पब्लिक में गाना, ये तो सब ठीक नहीं है। मोबाइल पर लगा देना, ये ठीक नहीं है। वो गायत्री मंत्र ऐसे नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार उसको मन में। जब तक आपको ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त ना हो तब तक नहीं। जिसको ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त है उन लोग को करना ही चाहिए, दिन में 3 बार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कि आपके, आपको किसी ने फोन लगाया और वो सब नहीं होना चाहिए, या फिर कहीं गाना लगा कर आप बैठ जाएं सुनने के लिए, वो नहीं। तो भक्तों को तो विशेषता नहीं करना चाहिए। हम लोग गायत्री मंत्र का जाप तभी करते हैं, वो भी जाप मन में, मतलब साउंड लगा के नहीं, जब हमें गुरु के द्वारा वो प्राप्त होता है। हमारे इस्कॉन में दीक्षा की विधि है, तीन दीक्षा दी जाती हैं। पहली दीक्षा हरिनाम दीक्षा कहलाती है, दूसरी दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा कहलाती है, और तीसरी दीक्षा संन्यास दीक्षा कहलाती है। तो हरिनाम दीक्षा, जहाँ गुरु हरिनाम देते हैं, आपको एक नाम देते हैं, आपका नया नाम, आपका नया जन्म होता है। फिर जब आप वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ लेते हो, योग्य हो जाते हो, तो भगवान के कृपा से आपको गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र दिया जाता है, तब आप ब्राह्मण दीक्षित हो जाते हो। गायत्री मंत्र मतलब आप योग्य हो गए भगवान के विग्रह की सेवा करने के लिए। तो जो भी भगवान की विग्रह की सेवा करें उन्हें ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए। और फिर जो ब्रह्मचारी इत्यादि हैं, या कोई गृहस्थ भी ऐसे हैं जो संन्यास लेना चाहते हैं, तो फिर उनको संन्यास दीक्षा दी जाती है। तो ऐसे हमारे संस्था में नियम है, दीक्षा के भी कुछ नियम हैं, ऐसे ही दीक्षा नहीं दी जाती है। उसको फिर कभी चर्चा करेंगे दीक्षा के लिए। और कोई प्रश्न? ये सिराज में नहीं, जब भी कोटि कहा जाता है तो करोड़, 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन इसका प्रमाण बहुत कठिन है ढूंढना कि 33 करोड़ कौन है, क्या है, कहाँ नाम दिया है, कहाँ दिया गया है, थोड़ा कठिन है। लेकिन चला आ रहा है 33 करोड़ हैं, तो हम लोग भी स्वीकार कर लेते कि होंगे 33 करोड़ देवी देवता। वैसे भागवत में, भगवद गीता या ऐसे कई ग्रंथों में कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्योंकि देवी देवताओं में श्रेणियाँ होती हैं, बहुत से देवी देवता होते हैं, एक ही प्रकार के देवी देवता नहीं। कुछ देवता हैं जो नियंत्रण करते हैं, उनको नियंत्रक देवता कहते हैं, ऐसे कई अलग अलग देवता। कुछ की उम्र बहुत लंबी होती है, कुछ की उम्र छोटी होती है, कुछ की उम्र कर्म के अनुसार होती है, तो ऐसे अलग अलग श्रेणियाँ हैं। यस, चैतन्य महाप्रभु को शिव भक्त। हाँ चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानना ठीक है या नहीं? चैतन्य महाप्रभु को शिव भक्त मानना, मुझे प्रश्न समझ नहीं आ रहा। किसी को समझ में आया तो शाक्त अलग है, शैवाइट अलग है। शाक्त शक्ति की पूजा करते, शिव जी की नहीं करते। अच्छा, मानते हैं या नहीं मानते हैं, ऐसा पूछ रहे आप? अब आप तो उनको पूछना चाहिए, शिव जी के भक्तों को। बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं क्योंकि उनको पता नहीं, बस इतना ही। ऐसा नहीं कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु का नाम ही नहीं सुना, कई लोगों ने तो बस इतना ही। हम लोगों ने भी इस्कॉन में आने से पहले चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं सुना था। हाँ, तो इसीलिए वो लोग इसलिए नहीं मानते कि उनको पता नहीं है। जब पता हो जाएगा तो वो लोग भी मानेंगे। चतुर्भुज रूप, चतुर्भुज दिखाया, षडभुज दिखाया, विश्व रूप दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने, ये सारे रूप दिखाए थे। ओके, बहुत समय है अभी। हाँ, कौन सा धाम? ये धाम का कोई लीला नहीं है, यहाँ कोई भगवान प्रकट नहीं हुए। ये लीला कुछ नहीं है, ये जो बिल्डिंग है, ये एक व्यक्ति ने, जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका हृदय अच्छा है, उन्होंने बनाई। हमने थोड़ा बहुत उनके बारे में सुना है कि उनको एक गुरु से कुछ प्राप्त हुआ, उसके कारण बहुत उनको प्रगति हुई, तो अपने गुरु की सेवा के लिए उन्होंने इस स्थान को बनाया। उनकी इच्छा पहले थी कि इसको वृद्धाश्रम बनाएं, जहां वृद्ध लोग आकर रहें और वो उनकी सेवा करें, इसीलिए इतने सारे रूम बनाए। लेकिन किसी कारणवश वो प्रोजेक्ट अभी हो नहीं सका, तो इसीलिए वो केवल जो आध्यात्मिक संस्थाएँ हैं उनको ये देते हैं कि वो लोग यहाँ आएँ, भजन कीर्तन करें, सुविधा दी हुई है। बहुत सी संस्थाएँ, अलग अलग संस्थाएँ आती हैं यहाँ पर अपने, जैसे हम लोग आए हैं ऐसे भक्त आते हैं, तो हम बड़े आभारी हैं और बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे उनका। हम उनसे मिले नहीं हैं कभी, लेकिन जहाँ भी हैं, जो भी हैं, तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी सुविधा उन्होंने दी है यहाँ पर भक्तों के लिए, और वो एक रुपया नहीं लेते हैं, सब वो अपनी सेवा के रूप में करते हैं। और उनकी तो इच्छा है कि और सुविधाएं यहाँ पर बढ़ाएं, ताकि लोग आएं और कीर्तन भजन करें। तो इसीलिए उनको और उनके गुरु को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी प्रेरणा उनको दी कि वो यहाँ पर इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सुविधा। आप लोगों को अच्छी लगी ना? कोई असुविधा हुई यहाँ पर? सब बढ़िया, किचन इतना अच्छा, प्रसाद माहौल, रहने की व्यवस्था क्लीन, पूरा साफ सुथरा, गर्म पानी, हाँ गर्म पानी, तो ये सारी व्यवस्था उन्होंने सोच कर की लोग आएंगे रहेंगे, कितना कष्ट नहीं हो किसी को। हमने सुना था पिछली बार जब हम आए थे कि उनकी इच्छा है कि यहाँ पर एक लॉन्ड्री लगाएंगे वो, ताकि जो भी भक्त आए उनको कपड़े भी धोने नहीं पड़े, वो भी व्यवस्था वही करेंगे। आप कपड़े दे दीजिए, वो लोग धो के आपको देंगे। तो इतनी सुविधा का वो सोच रहे हैं, तो निश्चित है। और भक्तों की इतनी सेवा कर रहे हैं, इतने भक्त आ रहे हैं, तो भगवान उनके ऊपर निश्चित कृपा करेंगे। हम भी प्रार्थना सब करते हैं उनसे, भगवान से, कि भगवान अपनी कृपा उनके ऊपर बनाए रखें। इस्कॉन सावंतवाड़ी में प्रचार चलता है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर प्रचार चलता है, छोटा सा केंद्र है इस्कॉन का। और इस तरफ रत्नागिरी में, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता, तो रत्नागिरी में भी बहुत अच्छा प्रचार चलता है। तो दोनों तरफ है, कुडाल में केवल नहीं है। कुडाल में इसलिए नहीं होगा कि ये है, यहाँ पर आके केवल कीर्तन करें और चले जाएं। ओके, और कोई प्रश्न? हाँ जी, सात जन्मों का संबंध, नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं मत जी, जरूरी नहीं है कितने जन्मों का संबंध हो या ना हो, हमें अगर बस भक्तों की कृपा मिले, हमारे हृदय में तीव्र इच्छा हो कृष्ण को प्राप्त करने की, गुरु का मार्ग निर्देशन हो, तो हम एक ही जन्म में कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम तीव्रता से भक्ति करें, पूर्ण समर्पण करें। उसके लिए सात जन्म रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि सात जन्मों तक आपका कृष्ण, आप कृष्ण भक्ति करते रहोगे तभी फिर कृष्ण के भक्त बनोगे, ऐसा कुछ एक जन्म में भी हो सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी और कोई प्रश्न है या फिर विराम दिया जाए? हाँ आप प्रश्न पूछ रहे हो, स्टोरी सुना रहे हो? एक वो होता है उसको ये मिलता है, हमें लगा कि स्टोरी चल रही है। भगवान का नाम लेने से पाप चले जाते हैं, फिर सेवा में लगने से तो निश्चित जाएंगे। तो इसीलिए अगर उसने बहुत कभी भगवान की भक्ति नहीं की, लेकिन अगर भक्त मिलता है, जैसे हमने बताया भक्ति का मार्ग कृपा पर आधारित है, तो भक्त का मिलना और भक्त की कृपा का मिलना, बस उसके बाद फिर उसके जितने भी पाप हैं निश्चित कट जाते हैं। लेकिन उसको गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए, जब तक गंभीरता से समर्पित भाव से भक्ति नहीं करता तब तक पाप बने रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर भक्त जो भी जपमाला लेकर घूम रहा है उसके पाप कट गए, ऐसा नहीं है। अगर उसका समर्पण भाव नहीं है तो फिर पाप नहीं कटते, फिर उसको पापों का फल भुगतना पड़ता है। फिर वो कैसे भी हो सकता है, किसी कष्ट के द्वारा, संतान कष्ट देती है, समाज कष्ट देता है, व्यापार कष्ट देता है, कुछ भी, वो सब भुगतना पड़ता है। ओके हरे कृष्णा। कोई और विषय? अभी शाम को कितने बजे हम लोग? हाँ माता जी, हाँ अगर किसी वैष्णव की मृत्यु हो जाए तो उसका श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करना पड़ता है या नहीं उसके घर वालों को? अगर वो शुद्ध वैष्णव है तो कोई आवश्यकता नहीं है, उत्सव मनाना चाहिए, श्राद्ध नहीं देना चाहिए। हम लोग प्रभुपाद जी के तिरुभाव पर उत्सव मनाते हैं, बहुत बड़ा उत्सव होता है, लोगों को बुलाते हैं, फीस्ट करते हैं। तो अगर वो शुद्ध वैष्णव हैं तो हम लोग उत्सव मनाते हैं, क्योंकि शुद्ध वैष्णव देह को त्याग के भगवान के धाम वापस जाते हैं, तो उनको धाम में वापस जाने का उत्सव मनाया जाता है, उसमें श्राद्ध नहीं होता है उनको, क्योंकि श्राद्ध कहाँ करेंगे, वो तो हैं ही भगवान के धाम ऑलरेडी में, तो उनको क्या श्राद्ध की आवश्यकता। हाँ अगर शुद्ध नहीं है वैष्णव, थोड़ा बहुत उसने भक्ति किया है, तब फिर श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन केवल उसको भगवान के भक्तों को घर में बुलाना चाहिए, कीर्तन कराना चाहिए, भगवान का प्रसाद वितरित करना चाहिए, बस, और कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। न छतरी दान करनी है, न चप्पल दान करना है, कुछ ज़रूरत नहीं है, वो सब मिल जाएगा उसको ऊपर, छतरी और चप्पल। आपको केवल भगवान के भक्तों को बुलाना है, कीर्तन होना चाहिए, भगवान के भक्त घर में आने चाहिए, और प्रसाद, वो भी भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद लगा, बस, और कुछ करने की। ये निश्चित नहीं है, अलग अलग कर्म के अनुसार या अलग अलग मृत्यु के अनुसार व्यक्ति को तुरंत जन्म भी मिल सकता है, समय भी लग सकता है। जैसे समझ लीजिए, पहली चीज़, अगर कोई बहुत अच्छी भक्ति करता है, शुद्ध भक्त हो जाता है, तो मृत्यु के बाद एक सेकंड में उसकी आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाती है, उसको समय नहीं लगता। लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, मान लीजिए किसी ने बहुत बुरे कर्म किए जीवन भर, बहुत बुरे कर्म, और उसको निश्चित नरक में जाना है, कभी उसने भगवान का नाम ही नहीं लिया, केवल लोगों को कष्ट दिया, मारा, ये सब किया, तो फिर उसको भी मरने के बाद तुरंत जन्म नहीं मिलता, फिर उसको नरक ले जाया जाता है, उसको कष्ट दिया जाता है, तड़पाया जाता है और उसको ट्रेन किया जाता है नीचे योनि में जाने के लिए, चाहे कुत्ता बनना हो या जो भी हो, फिर उसके बाद उसको शरीर मिलता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसने बहुत बुरे कार्य नहीं किए, ठीक ठाक कार्य किए और नेचुरल स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब फिर उसको पुनः दूसरा मनुष्य शरीर मिल जाता है। तो अलग अलग अवस्थाएं हैं कि व्यक्ति को कैसे, किस अवस्था में उसकी मृत्यु हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति 60 साल जीने वाला था लेकिन 40 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो फिर 20 साल तक उसको स्थूल शरीर नहीं मिलता, फिर उसको 20 साल तक सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है, जिसे हम लोग भूत कहते हैं। भूत, डरते हो आप लोग भूत से? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी नहीं डरते ना? अभी हम लोगों से बड़े भूत और कौन हो सकते हैं, इसलिए डरना नहीं चाहिए। इतने बड़े हम लोग ही भूत हैं। भूत वैसे जीवों को भी कहते हैं, भूत शब्द जीवों के लिए भी आता है। यस प्रभु, कृष्ण भक्ति में आने के बाद किसी देवी देवता की पूजा करना आवश्यक है क्या? आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर जब तक आपके मन में पूर्ण श्रद्धा नहीं है कृष्ण के प्रति और अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिस दिन ये श्रद्धा हो जाए कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण भक्ति ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, तब कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं मतलब अभी तक वो श्रद्धा नहीं आई है, इसलिए करते रहना चाहिए। हाँ जी, डीटीस की पूजा घर में कि मंदिर में? हाँ हाँ, तो जल्दी दीक्षा लेनी चाहिए फिर, सबको सारे घर को एक साथ लेना चाहिए तुरंत। मंदिर में ये नियम है कि डीटीस की पूजा ब्राह्मण दीक्षा हुए बिना नहीं होनी चाहिए। हमारे मंदिर में तो फिर भी हम लोग अभी वो भी नियम नहीं पालन कर पा रहे हैं क्योंकि भक्त कम है, लेकिन ये नियम है। घर के लिए वो नियम नहीं है, घर के लिए ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण दीक्षित होना ही चाहिए, घर में भक्त कर सकते हैं डीटी की सेवा। लेकिन हाँ, दीक्षा भी होनी चाहिए। और दीक्षा क्या है, इस्कॉन में दीक्षा के क्या नियम हैं और किसे दीक्षा लेनी चाहिए, कौन योग्य है दीक्षा के लिए, दीक्षा के लिए क्या क्या मंदिर में करना पड़ता है, ये सब हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। तो अभी जब अगला होगा उसमें एक काम करेंगे, शुरुआत में थोड़ा बहुत दीक्षा का विषय देंगे। आप लोगों को जो भी दीक्षा के विषय के प्रश्न हो, कौन दीक्षा के योग्य है, कैसे दीक्षा लेनी चाहिए, इस कौन में क्या नियम है, कौन गुरु हैं, सब चर्चा होगी। फिर उसके बाद कुछ भजन, आप में से कई लोग भजन गाना चाहते हैं लेकिन कृपया अभी नाम दीजिए। कल ऐसा हो गया था कि बाद में सब चलो मैं भी गा रहा हूँ, मैं भी गा रहा हूँ, ऐसा नहीं। नाम दीजिएगा पूनम प्रभु के पास और भजन, तो फिर उतने ही लोग वो भजन गाएंगे ताकि समय पर हो सके। और उसके बाद आप लोगों को बोलना है, हमने बहुत बोल लिया 3 दिन तक, अब आप लोगों को फिर बोलना है कि आप लोगों को एक कैसा लगा कार्यक्रम और आप फिर से आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, और इसमें कोई कमियां रह गई हों, निश्चित रह गई हैं, हम नहीं सम हम आशा ये नहीं करते कि आप सब आए कहें बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन आप ये भी बताइए कि कोई कमी रह गई तो उसको अगली बार पूरा करें। जैसे आप बोल सकते हैं कि प्रसादम थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं था, अगली बार थोड़ा अच्छा कीजिए, तो हम प्रयास करेंगे अच्छा करने का। या आपके रहने की सुविधा बहुत अच्छी थी, अगली बार टेंट लगाइए बाहर, हम वहीं पे रहेंगे, तो वैसा कर देंगे। या फिर आप कहिए कि हाँ, प्रवचन देने वाला एकदम अगली बार कोई थोड़ा अच्छा लेकर आइए, ये तो वो भी बहुत अच्छा। किसने कहा ये? तो ऐसे जो भी आपके ऊपर आपके मन में हो विचार, उसको प्रकट कीजिए। जो अच्छी चीज़ें हैं निश्चित कहिए, जो कुछ कमियां रह गई उसको कहिए ताकि हम अगली बार और अच्छा करें। और ये कितनी बार, साल में एक बार, दो साल में एक बार, दस साल में एक बार, कितना बार होना चाहिए, सब आप करेंगे तो हम लोग यहाँ पर उस वो चर्चा हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। हाँ, एक जाने की बात, रात को आज हमने सुना कि आप सब रात को ही जाना चाहते हैं। वैसे हमने ये सोचा था कि कल सुबह की ट्रेन से जाएं ताकि तकलीफ ना हो, लेकिन आप सबका विचार है कि नहीं रात को ही जाना है, रात को 12 बजे पहुंचेंगे, तो पता नहीं वहाँ पर व्यवस्था कैसे होगी। शायद 5 या 6 बजे ट्रेन है जो 9:30 बजे तक पहुंचा देती है, लेकिन जो ड्यूटी करने वाले हैं वो जा सकते हैं रात को, क्योंकि उनको ड्यूटी ज्वाइन करना है तो वो लोग जा सकते हैं, उनको नुकसान नहीं हो, पूरा एक दिन चला जाएगा उनको। तो ड्यूटी करने वाले रात को जा सकते हैं, जो रुकना चाहें रुक सकते हैं। हमारा एक ही चिंता थी कि रात को जब 12-1 बजे हम लोग कारवार में पहुंचेंगे तो रिक्शा वाले बड़ा परेशान करते हैं, एक एक जगह जाने का बहुत पैसा लेते हैं, और दूसरा रात के समय मान लीजिए अगर कोई अकेले किसी को जाना है तो दूर जाना हो तो ठीक नहीं है। 9:30 बजे जो ट्रेन पहुंचती है वो दिन में है, कहीं भी कुछ भी जा सकते हैं, बस पकड़ सकते हैं, ट्रेन ऑटो कर सकते हैं। लेकिन निर्णय यही हुआ कि रात को जाना है, तो व्यवस्था की जा रही है कि निताई पद्म प्रभु हम बता रहे थे कि रात को 12 बजे वहाँ से लेके जाने के लिए कुछ व्यवस्था किया है ना आपने, तो इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है, व्यवस्था की जा रही है। हाँ जी, ओके, वोटिंग कर लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं। आप में से कितने लोग अभी, लेकिन इसमें सबको हाथ उठाना है, अभी आप में आधे उठाएंगे आधे नहीं, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनका क्या, वो बोले हमें यहीं रहना है, वो संभव नहीं है। तो आप में से कितने लोग आज रात को जाना चाहते हैं, हाथ ऊपर कीजिए, आज रात को ही 9 बजे जाना चाहते हैं। रात को 9 बजे ट्रेन है, 12:30 तक पहुंच जाती है। माता जी आप नहीं जाना चाहते, आप ही तो बोल रहे थे सर। नहीं, आपको ही बोल रहा हूँ। आप कल सुबह जाना चाहते हो तो हाथ ऊपर क्यों नहीं कर रहे, रात को जाना चाहते। अच्छा, फिर से एक बार हाथ ऊपर की, कितने लोग रात को जाना चाहते हैं, एक दो, थोड़ा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 ओके। और कितने लोग कल सुबह जाने के लिए तैयार हैं, कल सुबह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ थोड़ा ऊपर रखिए, अरे 9 10 11 12 13 14 15 ऑलमोस्ट 50-50 हो गया, आधे आज जाएंगे आधे कल। लेकिन कल सुबह का ट्रेन पूछा कि नहीं, ऐसा हो कि हम लोग बैठ जाएं और सुबह ट्रेन ही नहीं हो, ट्रेन है सुबह 5 बजे, नहीं ज्यादा, थोड़ी लेट होगी क्योंकि वहां 9:30 वो ओखा एक्सप्रेस एक आती है 9:30 बजे, शायद वो है 5:30 है। अच्छा, थोड़ी रुकती नहीं है, ओके। एनीवे, एक काम कीजिए, अभी हम लोग जब अगली बार मिलेंगे उसको फाइनल कर लेंगे, तब तक आप सोच लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। आप रात को जाना चाहें रात को जाइए, कल सुबह जाना चाहें कल सुबह जाइए। अगर रात को आपके पास व्यवस्था है कारवार स्टेशन से घर जाने की तो आप रात को भी जा सकते हैं, नहीं तो रुक के, लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि अगर 5 बजे या 5:30 की ट्रेन पकड़नी है तो यहाँ से 4 बजे निकलना पड़ेगा, तो 3 बजे आपको उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे, कोई हमें कोई चिंता की बात नहीं, आप जैसे खुश हों वैसे, क्योंकि रात को भी रुकेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जाना है तो कोई प्रोग्राम तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कहाँ के लिए, ठीक है, आप लोग चर्चा कर लीजिए, जब मिलेंगे तभी फाइनल करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो भी आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, समय हो गया है। आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर एक दो घंटा और कथा करते हैं। और हम लोग वापस, क्योंकि आज आखिरी दिन है, आप थोड़ा सोइए कम, आपका रेस्ट थोड़ा कम कीजिए। अभी 2:15 हुआ है, हरि बोल। 3:30 बजे वापस क्लास के लिए आ जाइएगा। 3:30 बजे आप चाहे रेस्ट करें या ना करें, 3:30 शार्प यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है? अभी जल्दी से प्रसाद ले लीजिए और 3:30 बजे वापस यहाँ पे मिलेंगे। तब दो दीक्षा के विषय में विशेष चर्चा होगी। हरे कृष्ण।